आगे देखिए भाई सबक। फसलुन फिल अम्री बिल यद व इन काल लहा अम्रु की बी यदि की यनवी सलासन फकालत कद अख्तर तु नफसी बी वाहिदतिन फही सलासुन लिअन्न लिख्तियार यस्लुहु जवाबन लिल अम्री बिल यद लिकौनिही तमलीकन कत तख्यीर वलवाहिदतु सिफतुल इख्तियारति फसार का अन्नहा कालत इख्तरतु नफसी विमर्रतं वाहिदा वबिदालिका यकउ सलास। गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि हमारे नजदीक तीन किनायात में तलाक़े रजई होती है और बाकी जितने मशहूर किनायात हैं अरबी जुबान में उनके अंदर तलाक़े बाइन होती है, जबकि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि किनायात के जरिए हमेशा तलाक़े रजई होती है। वजह यह कि ये तलाक से किनायात हैं, यानी इनके जरिए तलाक का इरादा किया जाता है, इसीलिए इनमें तलाक की नीयत भी शर्त है और नीज इनकी वजह से तलाक का आदत भी कम हो जाता है। जबकि हम कहते हैं कि नहीं, इनके जरिए तलाक़े बाइन होगी भाई। वजह यह कि खावन जो है वो इबानत के तसर्रुफ का मोहताज है, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई शख्स अपनी बीवी से जान छुड़ाना चाहता है। अब अगर वो तलाक रजई देगा तो उसमें उसके इरादे के बगैर भी रुजू मुमकिन है कि बीवी आकर उसका बोसा ले ले तो रुजू हो जाएगा, तो हालांकि वो तो रुजू नहीं चाहता। और अगर तीन तलाकें देकर वो जान छुड़ाएगा तो फिर बाद में तलाफी की कोई सूरत न रहेगी, निकाह का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो अब वो मोहताज है कि ऐसे तरीके से जान छुड़ाए कि बाद में तलाफी भी हो सके और रुजू की भी कोई सूरत न रहे। तो ये शख्स मोहताज हुआ इबानत के तसर्रुफ का, और हाजत की वजह से शरीयत तसर्रुफ का हक देती है, वरना तो इंसान हरज में पड़ जाएगा, तंगी में और तकलीफ में पड़ जाएगा। तो लिहाजा खावंद को इबानत का हक होना चाहिए। और नीज इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये तलाक से किनायात हैं, तो उसका भी जवाब दिया कि ये तलाक से किनायात नहीं है, बल्कि ये अपने माना का अमल करते हैं। जैसे खावन बीवी से कहता है अंति बा इनुन, तो बा इनुन का माना है जुदा, तो ये बा इनुन लफ्ज अपने माना का अमल करेगा और औरत को खावन से जुदा कर देगा, लिहाजा ये तलाक से किनायात नहीं। और बाकी आपने कहा कि इनके अंदर तलाक की नीयत शर्त है, तो उसका भी जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि हमारे नजदीक तलाक की नीयत शर्त नहीं है, बल्कि बैनूनत की नौ मुतायन करने की शर्त है। इसलिए क्योंकि अंति बायनून का यह माना भी हो सकता है तू मेरे निकाह से जुदा है, और अंति बायनून का यह माना भी हो सकता है कि तू और औरतों से जुदा है। तो यहां बैनूनत की दो अनवा आ गई, एक बैनूनत अन निकाह है और एक बैनूनत अन शय इन आखर है भाई। तो लिहाजा इन दो में से एक की तायीन की नीयत की शर्त है, तलाक की नीयत की शर्त नहीं है भाई। और बाकी आपने कहा इसकी वजह से तलाक का अदद कम हो जाता है, वजह यह कि किनायात की वजह से निकाह खत्म हो रहा है, और निकाह खत्म होने की दो ही सूरतें हैं, या तो इसको फस्खे निकाह करार दिया जाए या इसको तलाक करार दिया जाए, क्योंकि निकाह तो इन्हीं दो तरीकों से खत्म होता है, या तलाक से या फस्ख से। और बिल इत्तेफाक ये जो किनायात हैं ये फस्खे निकाह नहीं है, जब फस्खे निकाह नहीं है तो इनके जरिए तलाक ही साबित होगी, क्योंकि उसी के जरिए निकाह खत्म होता है भाई। और नीज इनके अंदर तीन की नीयत भी सही है, इसलिए क्योंकि बैनूनत दो किस्म पर है, एक बैनूनत खफीफा है और एक बैनूनत गलीजा है, तो इसके अंदर बैनूनत गलीजा का इहतमाल है, अलबत्ता बैनूनत खफीफा तो यकीनी है क्योंकि वो अदना है, तो अदना तो यकीनी तौर पर साबित हो जाएगा और आला जो है वो नीयत के वक्त साबित हो जाएगा जी। और दो की नीयत सही नहीं है। और अगर खावन ने बीवी से कहा इअतद्दी 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 اور اس سے نیت پوچھی گئی تو اس نے کہا میں نے پہلے کے ذریعے طلاق کی نیت کی تھی اور باقی دو کے ذریعے حیض کی نیت کی تھی. تو کہتے ہیں قضاءً خاوند کی تصدیق کی جائے گی, کیونکہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ خاوند طلاق دینے کے بعد بیوی کو عدت گزارنے کا حکم دیتا ہے. اور اگر خاوند نے کہا پہلی میں میری طلاق کی نیت تھی اور باقی دو میں میری کوئی نیت نہیں تھی, تو اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی اور خاوند کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وجہ یہ کہ جب اس نے پہلے لفظ اعتدی میں طلاق کی نیت کر لی تو گویا طلاق کی بات شروع ہو گئی, مذاکرہ طلاق والی حالت ہو گئی. اور مذاکرہ طلاق کے اندر تو اس جیسا لفظ خاوند بولے جس کے اندر طلاق کا احتمال ہے اور رد وغیرہ کا احتمال نہیں ہے, تو اس کو طلاق پر ہی محمول کیا جاتا ہے. اور اگر خاوند نے کہا میں نے آخری اعتدی کے اندر طلاق کی نیت کی ہے تو پھر ایک طلاق واقع ہوگی, اور جبکہ پہلے دو جو ہیں ان میں خاوند کی تصدیق کی جائے گی. بھائی اس کے بعد ہم نے باب تفویض طلاق شروع کیا تھا, اور سب سے پہلی فصل اس میں اختیار کے بارے میں پڑھی. صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے اختاری اور طلاق کی نیت کرتا ہے تو اس نے بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا, لہذا اسی مجلس کے اندر بیوی جواب دے کہ اختر تو نفسی, تو اس صورت میں طلاق بائن ہو جائے گی اور عورت کو یہ اختیار اس مجلس کے اختتام تک رہے گا, الا یہ کہ کوئی ایسا فعل پایا جائے جو اعراض پر دلالت کر دے تو پھر اس صورت میں بھی اس کا اختیار ختم ہو جائے گا بھائی, اور نیز اس صورت میں ایک طلاق بائن ہوگی بھائی. لیکن اس کے ذریعے تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی اگرچہ خاوند ان کی نیت بھی کر لے, ایک ہی طلاق بائن واقع ہوگی. وجہ یہ کہ اختیار کے اندر تنوع نہیں ہے, اختیار کی انواع نہیں ہیں. بینونت کی تو انواع تھیں, بینونت خفیفہ اور بینونت غلیظہ, لہذا وہاں پر تو انتی بائنون کے اندر خاوند تین کی نیت کر سکتا ہے, لیکن اختیار جو ہے اس کی تو انواع نہیں, لہذا یہاں تین کی نیت بھی صحیح نہیں بھائی. اور صاحب ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اختیاری کا معنی ہے اختیار دینا, اور یہ اختیار طلاق کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے, لہذا یہاں نفس کے لفظ کے ساتھ اس کی تفسیر ضروری ہے بھائی. نفس کے لفظ کے خاوند بیوی سے کہتا ہے اختاری نفس کی, اور بیوی جواب میں کہتی ہے اختر تو نفسی, یا دونوں میں سے کوئی ایک نفس کا لفظ ذکر کرتا ہے دوسرا ذکر نہیں کرتا, تو اس صورت کے اندر بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر کسی نے بھی نفس کے لفظ کو ذکر نہیں کیا, کسی نے بھی اختیار کی تفسیر نہیں کی, تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی بھائی. وجہ یہ کہ یہ جو اختیار کے ذریعے طلاق کا واقع ہونا ہے یہ خلاف القیاس اجماع صحابہ سے ثابت ہے, اور جو چیز خلاف القیاس ثابت ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے, اور صحابہ سے جس اختیار کے بارے میں اجماع روایت کیا گیا ہے اس میں نفس کا لفظ ذکر ہے بھائی, تو معلوم ہوا نفس کے لفظ کا ذکر کرنا ضروری ہے. اور اگر نفس کا لفظ ذکر نہیں کیا لیکن کوئی اور ایسا لفظ ذکر کر دیا جس سے طلاق پر دلالت ہو جائے, تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. مثلا خاوند بیوی سے کہتا ہے اختاری اختیارتن, تو اس صورت میں یہ اختیارتن جو مصدر ہے اس سے بھی پتا چل گیا کہ خاوند طلاق کا اختیار دے رہا ہے, اس لیے کیونکہ اختیارتن مصدر کے آخر میں یہ جو گول تا ہے یہ تا وحدت کی ہے, معلوم ہوا ایک اختیار دے رہا ہے, اور اختیار کا ایک ہونا یا اختیار میں تعدد ہونا یہ صرف طلاق کے اندر ہوتا ہے, وہاں کبھی خاوند ایک طلاق کا اختیار دیتا ہے, کبھی دو طلاقوں کا اور کبھی تین طلاقوں کا, تو اس اختیار کے اندر تعدد اور وحدت ہوتی ہے, جبکہ باقی اختیار جو ہیں وہاں تعدد نہیں ہو سکتا بھائی. تو لہذا خاوند کا اختاری اختیارتن کہنا یہ بتلا رہا ہے کہ وہ طلاق کا اختیار دے رہا ہے بھائی. اور نیز صاحب ہدایہ نے یہ بھی آپ کو بتلایا کہ اگر عورت نے مضارع کا صیغہ استعمال کر لیا اور کہا انا اختار نفسی, تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی بھائی. اس کے بعد صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر خاوند نے بیوی سے کہا اختاری اختاری اختاری, تو اس صورت میں بھی یہ طلاق کا اختیار ہے, اس میں خاوند کی نیت کی بھی حاجت نہیں ہے, اس لیے کیونکہ اختیار میں وحدت یا تعدد یہ صرف طلاق کے اندر ہوتا ہے, تو یہاں تین مرتبہ کا یہ لفظ ذکر کرنا بتلا رہا ہے کہ یہ तलाक का इख्तियार दे रहा है, क्योंकि और इख्तियारों में तो तादुद नहीं होता भाई। तो अगर औरत ने कहा इख्तरतुल उला या इख्तरतुल वुस्ता या इख्तरतुल अखीरा था, तो फिर इस सूरत में साहिबैन फरमाते हैं एक ही तलाक वाकई होगी, जबकि इमाम साहब फरमाते हैं तीनों तलाकें वाकई होंगी। खामन ने क्या कहा था, इख्तारी 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 तीन मरतबा। तो साहिबैन फरमाते हैं कि यहां पर ये जो तीनों तलाकें हैं ये औरत की मिल्कियत में जमा हो गई, और जो चीज जमा हो इकट्ठी हो उसके अंदर तरतीब नहीं होती। जैसे एक कमरे में कई अफराद मौजूद हैं तो आप इनमें से किसी को भी नहीं कह सकते कि ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है। पहला दूसरा या तीसरा होना फेल के एतबार से हो सकता है, मसलन एक हो सकता है पहले आया हो, एक बाद में आया हो, एक तीसरे नंबर पर आया हो, तो आने में तो ये पहला दूसरा तीसरा हो सकते हैं, लेकिन खुद मजमुए के अंदर जमा होने के एतबार से इनमें तरतीब नहीं है भाई। तो यहां पर भी औरत के इख्तियार में, औरत की मिल्कियत में तीन तलाकें जमा हो गई, उनमें कोई तरतीब नहीं, लिहाजा बीवी का इख्तरतुल उला या इख्तरतुल वुस्ता या इख्तरतुल अखीरा था, ये जो उला वुस्ता या अखीरा की जो सिफत जिक्र कर रही है ये तरतीब का फायदा नहीं दे रही, क्योंकि यहां तलाकों में तरतीब है ही नहीं भाई। हां अलबत्ता तरतीब का फायदा तो नहीं दे रही है, लेकिन इफराद का फायदा देंगे। उला का क्या माना, जो पहली है, और पहली तरतीब तो नहीं लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि एक है, तो ये इफराद का फायदा देंगे और इससे एक तलाके बाइन वाके हो जाएगी। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि तीन तलाकें वाके हो जाएंगी, वजह ये कि यहां पर ये जो उला वुस्ता और अखीरा की सिफात हैं ये असल में तरतीब का फायदा दे रही हैं, और तरतीब के साथ साथ इफराद भी आ रही है, लेकिन इफराद की बुनियाद इस तरतीब पर है जी। इफराद की बुनियाद किस पर है, इस तरतीब पर है। ये पहली है मालूम हुआ ये एक है, ये दूसरी है मालूम हुआ ये भी एक है, ये तीसरी है मालूम हुआ ये भी एक। तो मालूम हुआ मुफरद होने की बुनियाद किस पर है, तरतीब पर है, और ये सिफात जब तरतीब का फायदा नहीं दे रही तो इस तरतीब पर जिस चीज की बुनियाद थी यानी इफराद उसका भी फायदा नहीं देंगी, लिहाजा ये सिफात लग हो गई, इनका कोई एतबार नहीं, और गोया औरत ने सिर्फ इख्तरतु कहा है, और इख्तरतु की सूरत में तो जो इख्तियार खावन ने दिया था वो इख्तियार उसने इस्तेमाल कर लिया तो तीनों तलाकें वाकई हो जाएंगी। खामन ने तो तीन तलाकों का मालिक बनाया था और उसने सबको इख्तियार कर लिया। और उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर खावन बीवी से कहता है इख्तारी और बीवी क्या कहे इख्तरतु नफसी, तो एक तलाक बाइन हो जाती है, लेकिन अगर इख्तरतु नफसी कहने के बजाय औरत जवाब में कहती है कद तलक्तु नफसी, वो सरीह लफ्ज ले आए कि मैंने अपने आप को तलाक दे दी, या इख्तरतु नफसी बि ततलीकतिन, यहां भी वो तलाक का लफ्ज ले आई, तो इस सूरत के अंदर एक तलाक वाकई होगी और खावंद रुजू कर सकता है। लेकिन मैंने आपको बतलाया कि ये किताबत की गलती है भाई, और शारहीन ने जिक्र किया है कि भाई एतबार उस तलाक का है जिसका खावंद ने मालिक बनाया है, और खावंद ने तो इख्तारी के जरिए तलाक बाइन का मालिक बनाया है, तो लिहाजा औरत के तलाक वाकई करने का एतबार नहीं है बल्कि खावंद के तलाक का इख्तियार देने का एतबार है, और उसने तो तलाक बाइन का इख्तियार दिया है, लिहाजा यहां पर तलाक बाइन ही वाकई होगी। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि यहां पर तो है फहिया वाहिदतुन यमलिकुर रजाता, तो जवाब दिया कि भाई ये किताबत की गलती है भाई, जामे कबीर में अलबत्ता है ला यमलिकुर रजाता, बात समझ में आ गई, और वो ही सही दुरुस्त मसला है, यहां मालूम हुआ किताबत की गलती है भाई। अब आइए आज के सबक पर, फसलुन फिल अम्री बिल यद, मसलन खावन बीवी से कहता है अम्रू की बियदी की, अम्रू की बियदी की, तेरा मामला तेरे हाथ में है, तो याद रखो ये किनाया है तलाक सुपुर्द करने से, यानी खावंद उसको तलाक का इख्तियार दे रहा है, और चूंकि ये किनाया है और आप जानते हैं किनाये के अंदर नीयत जरूरी है, तो खावंद ने अगर अम्रु की बियदी की लफ्ज बीवी से कहा और तलाक की नीयत कर ली तो बीवी को इख्तियार मिल गया, और ये इख्तियार कब तक रहेगा, मजलिस तक भाई, तो उस मजलिस के अंदर वो अपने आप को खावंद से जुदा कर सकती है भाई। फसलुन फिल अम्र बिल यदी, ये फसल है अमर बिल यद के बारे में, وَإِنْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ اور اگر خاوند نے بیوی سے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے ينوي ثلاثاً اور خاوند اس کے ذریعے تین کی نیت کرتا ہے فقالت عورت کہتی ہے قد اخترت نفسي بواحدت کہ میں نے اپنے ذات کو اختیار کر لیا بواحدت ایک کے ساتھ فہیا ثلاثن تو یہ تین طلاقیں ہوں گی ایک نہیں ہوگی خاوند نے کیا کہا امرو کی بیدی کی اور نیت تین طلاقوں کی ہے اور عورت کہتی ہے جواب میں اخترت نفسی بواحدتن تو یہاں پر اب ایک طلاق بائن واقع نہیں ہوگی بلکہ تینوں واقع ہو جائیں گی تینوں واقع ہو جائیں وجہ کیا وہ اب صاحب ہدایہ بتلائیں گے تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھیے وَإِنْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَنْوِي ثَلَاثًا اور اگر خاوند نے بیوی سے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے ينوي ثلاثًا اس حال میں کہ وہ تین کی نیت کرتا ہے فقالت قد اخترت نفسي بواحدتين عورت جواب میں کہتی ہے میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا بواحدتين ایک کے ساتھ فہی ثلاثن تو یہ تین طلاقیں ہوں گی لئن الاختیار یصلح جوابا للامر بالید اس لیے کیونکہ اختیار جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے جوابا للامر بھائی دیکھیے پہلا اشکال تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ خاوند کہہ رہا ہے امرو کی بیدی کی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور عورت جواب میں کیا کہہ رہی ہے اخترت نفسی اخترت نفسی بھائی اخترت نفسی یہ تو خاوند جب اختاری کہتا تھا کہ تجھے اختیار ہے وہاں عورت جواب میں اخترت نفسی کہے تو طلاق واقع ہوتی ہے تو یہاں اس سے کیسے طلاق واقع ہوگی تو اس کا جواب آپ کو صاحب ہدایہ دیں گے کہ جیسے اختاری کے اندر خاوند طلاق کا مالک بناتا ہے بیوی کو یہاں پر بھی امر کی بیدی کے اندر خاوند کیا کر رہا ہے بیوی کو طلاق کا مالک بنا رہا ہے تو جیسے اختاری کے اندر اخترت نفسی سے طلاق آ جاتی تھی تو یہاں پر بھی اخترت نفسی سے طلاق آ جائے گی کیونکہ دونوں کے اندر عورت کو اختیار دیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں لئن الاختیار یصلح جوابا للامر بالید اس لیے کیونکہ یہ اختیار جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ جواب بن جائے امر بالید کا لکونہ تملیکا اس لیے کیونکہ یہ مالک بنانا ہے یہ امر بالید کیا ہے یہ مالک بنانا ہے قد تخیر جیسے کہ اختیار دینا اختیار دینے میں بھی وہ خاوند کیا کرتا تھا مالک بناتا تھا تو امر بالید میں بھی مالک بنانا ہے والواحدت صفت الاختیارتی اچھا بھائی عورت نے تو کہا قد اخترت نفسی بواحدت ای بتطلیقت واحدت تو آپ تو کہہ رہے ہیں تینوں واقع ہوں گی کہتے ہیں بھائی یہاں پر یہ جو واحدہ ہے یہ تطلیقہ کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ اختیارہ کی صفت ہے کس کی بھائی آپ یہاں واحدہ کو مصدر کی صفت بنائیں گے نا مصدر اور مصدر یہاں آپ تطلیق نہیں نکال سکتے کیونکہ ماقبل میں طلاق کا فعل ہی نہیں ذکر ماقبل میں تو ہے قد اخترت نفسی بواحدت تو ماقبل میں اختیار کا فعل ذکر ہے اسی سے مصدر بھی اختیارت واحدت تو اختیارت مصدر یہاں نکالیں گے یہاں طلقت کا کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے لہذا تطلیق کا لفظ نہیں نکالیں گے تو جب اختیارہ کا لفظ نکال لیا تو کیا معنی ہوا قد اخترت نفسی باختیارت واحدت اور گزشتہ سبق میں آیا تھا اختیارت کے اندر یہ تا کس چیز کی ہے وحدت کی ہے یعنی میں ایک مرتبہ اختیار کرتی ہوں جیسے میں کہتا ہوں ضربت ضربتن میں نے ایک مرتبہ پٹائی کی تو یہاں پر بھی اختیارتن یہ تا کس چیز کی ہے وحدت کی ہے معلوم ہے میں ایک مرتبہ اختیار کرتی ہوں یعنی یہ گویا مرتن کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے مرتن یعنی ایک مرتبہ تو گویا عورت یوں کہہ رہی ہے قد اخترت نفسی بمرت واحدت میں نے ایک مرتبہ اپنی ذات کو اختیار کر لیا اور خاوند نے نیت کتنے کی تھی تین کی تو اسی تین کے مطابق یہاں تین طلاقیں ہو جائیں گی اس نے بیوی نے کیا کر لیا خاوند نے جو معاملہ اس کے ہاتھ میں دیا اس کو بیوی نے ایک مرتبہ اختیار کر لیا اور اختیار تو کتنے کا تھا تین طلاقوں کا تو وہ تین طلاقوں کو گویا ایک مرتبہ میں نے اختیار کر لیا تو تین واقع ہو جائیں گی کس چیز کو اختیار کر رہی ہے اسی چیز کو جس کا اختیار کس نے دیا تھا خاوند نے دیا تھا جو معاملہ خاوند نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا اور خاوند نے تو کتنی طلاقوں کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دیا تین طلاقوں کا تو اختیاری مرتم واحدہ سے بھی کیا پتا چلا یہ اسی جو خاوند نے اختیار دیا تھا اسی کو ایک مرتبہ اختیار کر رہی ہے تو اس سے کتنی طلاقیں ہو جائیں گی تین طلاقیں ہو جائیں گی تو کہتے ہیں والواحدت صفت الاختیارتی، اور یہاں واحدہ کا جو لفظ آیا یہ اختیارہ کی صفت ہے، فسار کا انہا کالا، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے عورت نے یوں کہا ہو اختر تو نفسی بھی مرت واحدت، ان کے میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا ایک مرتبہ، یعنی ان ساری طلاقوں کے ساتھ جو مجھے خاوند نے سپرد کی ہیں ان کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ اختیار کر لیا، وَبِذَلِكَ يَقَعُ الثَّلَاثُ، اور ان لفظوں سے تو تین واقع ہوتی، اگر خاوند یوں کہتا امر کی بیدی کی اور تین کی نیت کرتا اور بیوی جواب میں کہتی اخترت نفسی بمرت واحدت، تو اگر بیوی مرت واحدہ کی تصریح کر دیتی تو اس سے تین ہی طلاقیں ہونی تھیں، تو جب اختیارتن کہا تو یہ بھی اسی طرح ہے جیسے مرتن کہا ہو، لہذا اس سے بھی تین ہی واقع ہوں گی بھائی. یہ معنی ہے فسار کا انہا قالت اخترت نفسی بھی مرت واحدت، تو یہ ایسے ہی ہو گیا گویا کہ عورت نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا ایک مرتبہ، وَبِذَلِكَ يَقَعُ الثَّلَاثُ، اور اس کے ذریعے تو تین واقع ہوں گی، تو اختیارتن واحدہ کے ذریعے بھی تین واقع ہوں گی. ولو قالت قد طلقت نفسي بواحدة او اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة، خاوند نے کہا امر کی بیدی کی، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور یہ کنایہ ہے طلاق کے اختیار سے، خاوند اس کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے، اور نیز اس کے ذریعے طلاق بائن ہوتی ہے، اس کے ذریعے طلاق بائن ہوتی ہے. تو خاوند نے تو کہا امر کی بیدی کی، اور جواب میں عورت جو ہے صریح لفظ استعمال کرتی ہے، اور صریح کے ذریعے تو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، تو کیا اس صورت میں پھر طلاق رجعی واقع ہوگی؟ تو آپ کو صاحب ہدایہ بتلائیں گے کہ نہیں، اعتبار اس طلاق کا ہے جس کا خاوند نے اس کو مالک بنایا ہے، اور خاوند نے تو اس کو طلاق بائن کا مالک بنایا ہے، تو عورت جو واقع کرے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ طلاق بائن ہوگی، اور اس کے علاوہ جو کوئی صفت وہ بیان کرتی ہے رجوع وغیرہ والی، تو وہ صفت لغو ہو جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولو قالت قد طلقت نفسی بواحدت، اور اگر عورت نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنی ذات کو ایک طلاق دے دی، دیکھو قد طلقت نفسی بواحدت، طلقت کا لفظ لے آئی، او اخترت نفسی بتطلیقت، یا یہ عورت نے جواب میں کہا یعنی تطلیقہ کا لفظ لے آئے، فہی واحدت بائنت، تو یہ ایک بائنہ طلاق ہے، لأن الواحدۃ نعت لمصدر محذوف، اس لیے کیونکہ یہاں واحدہ جو ہے وہ مصدر محذوف کی صفت ہے. کون سا واحدہ؟ یہ جو ابھی آیا قد طلقت نفسی بواحدت، قد طلقت نفسی جی، اب آپ مجھے بتائیے اس بواحدہ کا موصوف کیا ہے؟ قد طلقت نفسی بواحدت، ہاں یہاں تطلیقتن ہوگا مصدر، کیونکہ ماقبل میں طلقت فعل موجود ہے، جبکہ پچھلے مسئلے میں طلقت والا فعل موجود نہیں تھا، وہاں صرف اختیار والا فعل تھا. تو یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، اس لیے کیونکہ واحدہ کا لفظ جو عورت کے کلام میں آیا ہے یہاں پر اس مسئلے میں، یہ نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، یہ مصدر محذوف کی صفت ہے، وَهُوَ فِي الْأُولَى الْإِخْتِيَارَةُ وَفِي الثَّانِيَةِ التَّطْلِيقَةُ، اور وہ مصدر محذوف جو ہے پہلی صورت کے اندر الْإِخْتِيَارَةُ وہ اختیارہ ہے، یعنی وہ پہلے مسئلے میں، وفی ثانیتی تطلیقت، اور دوسرے میں تطلیقہ مصدر ہے. الا انہا تکون بائنتن، مگر ایک بات ہے کہ یہ طلاق بائن ہی ہوگی، اگرچہ تطلیقہ مصدر خود آ رہا ہے لیکن پھر بھی صریح لفظ کے باوجود طلاق کون سی ہوگی؟ بائن. کہتے ہیں الا انہا تکون بائنتن، مگر یہ طلاق جو ہے بائنہ ہوگی، لان تفویض فی البائن ضرورت ملکیہا امرہا، لأن تفویض فی البائن، اس لیے کیونکہ سپرد کرنا فی البائن بائن میں ہے، یہ فی البائن یہ خبر ہے انا کی، لأن تفویض اس لیے کیونکہ سپرد کرنا، خاوند نے جو طلاق سپرد کی ہے فی البائن وہ کس میں ہے؟ بائن میں ہے، یعنی خاوند نے طلاق بائن سپرد کی ہے. ضرورت ملکیہا امرہا، اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ عورت اپنے معاملے کی مالک ہو. بھائی عورت اپنے معاملے کی تبھی مالک بن سکتی ہے جب یہاں طلاق بائن آئے. بھائی توجہ ہے، खामन ने क्या कहा, अमरु की बियदी की, तेरा मामला तेरे हाथ में है। तो औरत के हाथ में मामला उसी वक्त हो सकता है जब इसे तलाक बाइन मुराद ली जाए। अगर तलाक रजई मुराद लेंगे फिर तो औरत के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो एक तलाक तो वाकई कर देगी लेकिन खामन तो रुजू कर सकता है, वो अभी भी उसी तरह बीवी है भाई। तो औरत के हाथ में मामला होना ये तभी हो सकता है जब इससे कौन सी तलाक मुराद ली जाए, तलाक बाइंद के, उसके जरिए मामला औरत के हाथ में आ गया, वो खावन से जुदाई इख्तियार कर सकती है। लेकिन अगर इसे तलाक रजाई मुराद दी जाए फिर तो गोया औरत के हाथ में मामला है ही नहीं भाई। तो कहते हैं लिअन्न तफवीज फिल बाइनी, इसलिए क्योंकि खावन का तलाक का सुपुर्द करना फिल बाइनी ये तलाक बाइन में है, जरूरत मिल की हा अमरहा, इस बात के जरूरी होने की वजह से कि औरत अपने मामले की मालिक हो, औरत अपने मामले की मालिक हो। दोबारा देखिए तर्जमा, जरूरत मिल की हा अमरहा, तर्जमा आखिर से करें, अमरहा उस औरत का मामला, इस औरत का अपने मामले के मालिक होने की जरूरत की वजह से, जरूरत मिल की हा अमरहा, इस औरत का अपने मामले का मालिक होने की जरूरत की वजह से, इस औरत का अपने मामले का मालिक होना इसके लिए जरूरी है कि तलाक़े बाइन सुपुर्द की जाए। औरत का अपने मामले का मालिक होना इसके साथ क्या जरूरी है कि तलाक बाइन का सुपुर्द किया जाए, तलाक रजई के अंदर तो औरत अपने मामले की मालिक नहीं बनती। तो कहते हैं लिअन्न तफवीज फिल बाइनी जरूरत मिल की हा अमरहा, इसलिए क्योंकि खावन का मामला सुपुर्द करना यह तलाक बाइन में होगा, जरूरत मिल की हा अमरहा, औरत का अपने मामले के मालिक होने के जरूरी होने की वजह से, औरत का अपने मामले का मालिक होने के जरूरी होने की वजह से यह सुपुर्द करना तलाक बाइन में होगा भाई। वह कलाम हुआ खराजा जवाबन लहू, और औरत का कलाम जो है वो खावंद के कलाम के लिए जवाब होकर निकला है, औरत का कलाम खावंद के जवाब के तौर पर आया है। फतसीर उस सिफतुल मस्कूरत फी तफवीजी, तो वो सिफत जो तफवीज के अंदर मजकूर थी जी, जो खावंद ने सुपुर्द की थी, और खावंद ने कौन सी तलाक सुपुर्द की है, तलाक बाइन, तो उसने बाइन सिफत के साथ तलाक सुपुर्द की है। तो फतसीर उस सिफतुल मस्कूरत फी तफवीजी, बस वो सिफत जो खावन के सुपुर्द करने में मजकूर थी वो हो जाएगी मजकूरतन फिल ईकाई, औरत के तलाक के वाके करने में भी मजकूर होगी वो, यानी खावन ने जिस तलाक का मालिक बनाया है वही तलाक वाके होगी, औरत उसकी सिफत को बदल नहीं सकती। तो कहते हैं फतसीर उस सिफतुल मस्कूरत फी तफवीजी, पस हो जाएगी वो सिफत जिसको तफवीज में जिक्र किया गया है मस्कूरतन फिल ईकाई, वो मस्कूर हो जाएगी ईका में भी। वह इन्नमा तसिहु नियतु सलासिफी कौलिही, यहां से फर्क बयान कर रहे हैं कि आपने हमें कहा था इख्तारी, इसके अंदर खावंतीन की नियत करे तब भी तीन वाके नहीं होंगी, और अमरु की भी यदि की, इसके अंदर खावंतीन की नियत करे तो तीन वाके हो जाएंगी। तो अब वो फर्क बयान करने लगे कि दोनों में फर्क की वजह क्या है। तो कहते हैं वह इन नमा तसिहु नियतु सलासिफी कौली ही, अमरु की भी यदि की, के खावन के कौल अमरु की भी यदि की, इसके अंदर तीन की नियत भी सही है। लिअन्नहु यहतमिलुल उमूम वल खुसूसा, इसलिए क्योंकि ये लफ्ज जो है, ये जो अमर का लफ्ज है, ये उमूम और खुसूस का इहतमाल रखता है। याद रखो उलमा फरमाते हैं कि अमर का लफ्ज एक ऐसा इसम है जिसमें बहुत ज्यादा उमूम है, हर चीज इसके अंदर आ जाती है, हर चीज एक अमर है, तो अमर का लफ्ज बेइंतहा आम है, हर चीज इसके अंदर दाखिल हो जाती है। इसी तरह जैसे शय का लफ्ज है, हर चीज क्या है, वो शय है, वो शय है। चुनांचे उलमाए नह फरमाते हैं कि शय उनका लफ्ज अनकर उन नकिरात है, तमाम नकिरों में सबसे ज्यादा तनकीर और सबसे ज्यादा उमूम शय उनके अंदर है। दुनिया की हर चीज को आप शय कह सकते हैं भाई, तो शय के अंदर जैसे इंतहा दर्जे का उमूम, इसी तरह लफ्ज अमर के अंदर भी इंतहा दर्जे का उमूम है। हर चीज को, हर फेल को आप अमर कह सकते हैं, जब हर फेल को आप अमर कह सकते हैं तो तलाक भी एक अमर है, तलाक भी क्या है, एक अमर है। तो खावन ने जब यूं कहा अमरु की भी यदि की, तो गोया अमर के जरिए तलाक की नियत है, तो गोया वो यूं कह रहा है तलाकू की भी यदि की, तलाक की बियदी की, तेरी तलाक तेरे हाथ में है, और तलाक तो मस्तर है और मस्तर इसमें जिंस होता है और वो कलील और कसीर का इस्तेमाल रखता है। उसके जरिए एक फर्द का इरादा भी सही और सारी जिंस का इरादा भी सही, लिहाजा यहां तीन तलाकों की नीयत भी सही है। बात समझ में आ गई किस वजह से कि ये अमर का लफ्ज जो है इसमें बे इंतहा उमूम है भाई, तो ये उमूम का भी इस्तेमाल रखता है और खुसूस का भी, तो लिहाजा अगर उमूम की नीयत खावंद करेगा यानी तीन तलाकों की तो वो भी वाकई हो जाएंगी। तो कहते हैं वही नमा तसिहु नीयत सलासिफी कौली ही अमरू की बियदी की, खावंद का कौल जो है अमरू की बियदी की इसमें तीन की नीयत भी सही है। लिअन्नहु यहतमिलुल उमूम वल खुसूसा, इसलिए क्योंकि उमूम और खुसूस का इस्तेमाल रखता है। खुसूस यानी एक फर्द का इरादा किया जाए एक तलाक का, और उमूम यानी तीनों तलाकों का इरादा कर लिया जाए, तो यह उमूम और खुसूस का इस्तेमाल रखता है। वह नीयत सलासी नीयत तामीम, और तीन की नीयत करना यह तामीम की नीयत करना है, मालूम है खावंद उसमें उमूम पैदा कर रहा है। बेखिलाफ कौली इख्तारी, बखिलाफ खावंद का कौल इख्तारी। लिअन्नहु ला यहतमिलुल उमूमा, वह उमूम का इस्तेमाल नहीं रखता, वह उमूम का इहतमाल नहीं रखता। वकद हक्कतनाहु मिन कब्लु, और तहकीक हम इसको साबित कर चुके हैं पहले, भाई पीछे साहिब हिदाया ने बतलाया था भाई एक दो सफे कबल। लिअन्नल इख्तियार ला यतनव्वउ बिखिलाफिल इबानती, कि इख्तियार में तनव्वउ नहीं होता, इख्तियार में अनवा नहीं होती। हां बैनूनत में अनवा होती हैं, बैनूनत खफीफा और बैनूनत गलीजा। पिछले सफे पर जहां यह बात आई थी कि इख्तारी के जरिए तीन की नीयत की जाए तो तीन वाकई नहीं होंगी भाई, तो वजह बतलाई थी क्योंकि इख्तियार में अनवा नहीं है भाई, तो जब इख्तियार में अनवा नहीं है तो वहां पर तीन की नीयत भी सही नहीं। तो कहते हैं बिखिलाफ कौली इख्तारी, बखिलाफ खावंद के कौल इख्तारी के। लिए अन्नहु ला यहतमिलुल उमूम, क्योंकि वो उमूम का इस्तेमाल नहीं रखता। वकद हक्कतनाहु मिन कब्लु, और तहकीक के हम पहले साबित कर चुके हैं। वलौ काल लहा अमरु की बियदिकिल यौम व बाद गदिन लम यदखुल फीहिल लैलु व इन रद्दतिल अमर फी यौमिहा बतलल अमरु दालिकल यौमि व कान बियदिहा अमरुन बाद गदिन। सूरत मसला ये, खावंद ने बीवी से कहा अमरु की बियदिकिल यौम व बाद गदिन, तेरा मामला तेरे हाथ में है आज के दिन और परसों, कल को नहीं जिक्र किया दरमियान वाले कल को, तेरा मामला तेरे हाथ में है आज और कल के बाद। देखो कल को नहीं जिक्र किया, क्या कहा अल यौमा व बाद गदिन, गद किसे कहते हैं अरबी जुबान में, आने वाला कल, और खावंद ने आने वाले कल को नहीं जिक्र किया, बाद गदिन कल के बाद वाला दिन यानी परसों को जिक्र किया है। तो आप इस सूरत में याद रखो, याद रखो फुकहा फरमाते हैं कि यह दरअसल खावन दो इख्तियार दे रहा है, गोया खावन यूं कह रहा है अमरु की भी यदि की यौमा, आज के दिन भी मामला तेरे हाथ में, वह अमरु की भी यदि की बाद अगदिन, और परसों भी मामला तेरे हाथ में है। तो गोया दो अमर आ गए, दो इख्तियार मिल गए औरत को, आज का इख्तियार अलग और परसों वाला इख्तियार अलग। दरअसल आगे बतलाएंगे ये जो दो वक्तों के दरमियान खावन ने फसल कर दिया, अगर खावन फसल न करता यूं कहता कि तुझे आज भी इख्तियार है और कल भी इख्तियार है और परसों भी इख्तियार है, तो इसका मतलब है एक ही इख्तियार दे रहा है, अलबत्ता उसकी मुद्दत तीन दिन तक है। इख्तियार कितना, एक, मुद्दत कितनी, तीन दिन। बात समझ में आए, तेरा मामला तेरे हाथ में है आज भी और कल भी और परसों भी, तो फिर इस सूरत के अंदर याद रखो मालूम हो वो तीन दिन का इख्तियार दे रहा है और इख्तियार एक ही है, और इसमें रात भी दाखिल हो जाएगी यानी रात को भी वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है और दिन को भी इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन है एक ही इख्तियार, एक ही दफा इस्तेमाल कर सकती है। अगर उसने कहा इख्तरतु ज़ौजी, मैं अपने खावन को इख्तियार करती हूं, तलाक को इख्तियार नहीं करती, बस इख्तियार खत्म, या इसने एक दफा कह दिया इख्तरतु नफ्सी, मैंने अपने आप को क्या कर लिया, इख्तियार कर लिया, बस तलाक हो गई और इख्तियार भी खत्म, क्योंकि एक दफा जब जुदाई आ गई फिर तो अब इख्तियार की कोई हाजत न रही भाई। बात समझ में आ गई, लेकिन यहां खावन ने क्या जिक्र किया है कि तेरा मामला तेरे हाथ में है आज और बाद गदिन, कल के बाद यानी परसों, मन हुआ बीच में जो गद है उसको खावन ने जिक्र नहीं किया, उसमें इख्तियार नहीं है। जब उसमें इख्तियार नहीं है तो ये एक ही इख्तियार मुसलसल हो नहीं सकता, क्योंकि दरमियान में जमाने का फसल आ रहा है। मालूम हुआ आज का इख्तियार और है और परसों का इख्तियार और है। लिहाजा अगर औरत ने कह दिया, पहले दिन ही कह दिया मैं अपने आप को इख्तियार करती हूं, तो बात ही खत्म, निकाह ही टूट गया, अब परसों वाले इख्तियार की कोई हाजत ही ना रही। लेकिन अगर औरत ने पहले दिन इख्तियार को रद्द कर दिया कि नहीं मैं अपने खावंद को इख्तियार करती हूं, तो क्या बाद गदिन परसों फिर उसको इख्तियार मिलेगा या नहीं? कहते हैं परसों फिर इख्तियार मिल जाएगा, क्योंकि ये दो इख्तियार थे भाई, ये दो इख्तियार थे। आज अगर उसने इसको रद्द कर दिया है, खावंद को इख्तियार किया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि परसों वाला इख्तियार भी खत्म हो गया, वो अलग इख्तियार है। तो कहते हैं वलौ काल लहू अमरु की बियदि किल यौम व बादा गदिन, और अगर खावन ने बीवी से कहा तेरा मामला तेरे हाथ में है, अल यौम आज के दिन, व बादा गदिन और कल के बाद यानी परसों, लम यदखुल फीही लैलू, तो रात इसके अंदर दाखिल नहीं। अगर एक ही इख्तियार मुसलसल चल रहा होता तीन दिन तक या दो दिन तक, फिर तो रात ने दाखिल हो जाना था, तबान रात ने तबान दाखिल हो जाना था, क्योंकि बाज औकात किसी की चीज के बारे में मशवरा करते हुए ज्यादा वक्त गुजर जाता है, रात तक मशवरा चलता रहता है, तो फिर तो तबान रात ने दाखिल हो जाना था। लेकिन यहां जब दो अलग अलग दिन जिक्र कर रहा है खावन, आज और बादा गदिन, तो जब दरमियान वाला दिन नहीं शामिल तो रात भी नहीं शामिल भाई, उस रात को इसको इख्तियार नहीं होगा। तो कहते हैं लम यदखुल फीही लैलू, इसके अंदर रात दाखिल नहीं होगी, व इन रद्दतिल अम्र फी यौमिहा, और अगर औरत ने इस मामले को रद्द कर दिया, फी यौमिहा उस अपने दिन में यानी उसी दिन में, बतला अम्रु ज़ालिकल यौमी, तो उस दिन वाला मामला तो बातिल हुआ, उस दिन का इख्तियार तो खत्म हुआ, लेकिन वकान बियदिहा अम्रुम बादा गदिन, लेकिन परसों फिर उसके हाथ में होगा मामला, लिअन्नहु सर्रह बिज़िक्रि वक्तैन, इसलिए क्योंकि खावंद ने तसरीह की है दो वक्तों को जिक्र करते हुए, बैनहुमा वक्तुम मिन जिन्सिहिमा, और इन दो वक्तों के दरमियान एक और वक्त है, मिन जिन्सिहिमा, जो इन्हीं की जिन्स में से है, लम यतनावलहुल अम्रु, और उसको अमर शामिल नहीं। इन दो दिनों के दरमियान, आज और परसों के दरमियान एक और वक्त है, यानी कल का दिन है, और वो भी इन्हीं की जिन्स में से है, यानी जैसे ये दिन है वो दरमियान में भी क्या है, एक दिन है, और अमर उसको शामिल नहीं है। तो कहते हैं दोबारा देखिए, लिया नहु सर रहा भी जिक्र वक्तैन, इसलिए क्योंकि खावंद ने तसरीह कर दी, तसरीह का माना है साफ लफ्जों में जिक्र करना, लिया नहु सर रहा भी जिक्र वक्तैन, इसलिए क्योंकि खावंद ने तसरीह कर दी दो वक्तों के जिक्र के साथ, बैनहुमा वक्तुम मिन जिन्सी हिमा, ये दो ऐसे वक्त हैं कि इनके दरमियान एक और वक्त भी है इन्हीं की जिन्स में से, लम यतनावल हुल अमरु, लेकिन इस दरमियान वाले वक्त को अमर शामिल नहीं है, वो जो अमरु की भी यदि की था लफ्ज था वो इसको शामिल नहीं। ये जिक्रुल यौमी भी इबारत इल फर्दी ला यतनावलुल लैला, अच्छा बतलाया भाई रात इसमें दाखिल नहीं, ये जिक्रुल यौमी भी इबारत इल फर्दी, इसलिए क्योंकि यौम के लफ्ज को जिक्र करना भी इबारत इल फर्दी, मुफरद इबारत यानी मुफरद लफ्ज के साथ, यानी अकेले, यू कहो अकेले दिन को जिक्र किया जाए तो ये लैल को शामिल नहीं होता, ये नहार को कहते हैं। तो कहते हैं इदिक्रुल यौमी भी इबारत इल फर्दी ला यतनावलुल लैला, इसलिए क्योंकि दिन का जिक्र मुफरद इबारत के साथ यानी अकेले लफ्ज के साथ, ला यतनावलुल लैला, ये रात को शामिल नहीं होता, फकाना अमरैनी, तो ये दो अमर हो गए, फकाना देखो तस्निया है, फकाना अमरैनी, तो गोया ये दो अमर हो गए, एक अमर बिलयद आज है और एक अमर बिलयद परसों है भाई, फबिरद्दी अहदिही मा ला यर्तद्दुल आखरू, तो इन दोनों में से एक को रद्द करने से ला यर्तद्दुल आखरू दूसरा रद्द नहीं होता। वकाल जुफर रहिमहुल्लाहु हुमा अमरुन वाहिदुन, इमाम जुफर फरमाते नहीं एक ही अमर है, एक ही इख्तियार है, दो अलग अलग इख्तियार नहीं है। तो वकाल जुफर रहमहुल्लाहुमा अमरुन वाहिदुन, के दोनों एक ही अमर हैं, बिमंजिलति कौलिहि अंति तालिकुनिल यौम व बादा गदिन, कहते हैं ये खावंद के इसी कौल के दर्जे में है कि वो अपनी बीवी से कहे अंति तालिकुनिल यौम व बादा गदिन, तू तलाक वाली है आज के दिन, व बादा गदिन और परसों, तू तलाक वाली है आज के दिन और परसों, تو یہ اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی. توجہ ہے. آپ نے تو کیا کہا؟ امرو کی بیدی کی الیوم و بعد غدن. معلوم ہوا الیوم کے لیے امرو کی بیدی کی آپ نے الگ نکالا اور بعد غدن کے لیے آپ نے امر بالید الگ نکالا. تو دو امر بالید ہو گئے. حالانکہ اگر خاوند بیوی سے کہے انت طالقن الیوم و بعد غدن, تو اگر آپ کی تقریر لی جائے پھر تو یہاں دو طلاقیں ہونی چاہیے. ایک تو انت طالقن الیوم اور دوسرا بعد غدن کے لیے بھی انت طالقن, جیسے وہاں آپ نے امر بالید کو دوبارہ نکالا تھا بعد غدن کے لیے, تو یہاں بھی انت طالقن کو بعد غدن کے لیے الگ نکالنا پڑے گا. اور اس کا تقاضا ہے کہ دو طلاقیں واقع ہوں, ایک انت طالقن الیوم اور ایک انت طالقن بعد غدن. لیکن بالاتفاق سب کے نزدیک یہاں ایک ہی طلاق ہوتی ہے. تو لہذا خاوند کا یہ جو قول تھا امرو کی بیدی کی الیوم و بعد غدن, یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے خاوند کا قول انت طالقن الیوم و بعد غدن ہے. دونوں کے اندر وقت کو وقت پر عطف کیا گیا ہے, اور اس میں جیسے وہاں امر کا تکرار نہیں یہاں پر طلاق کا تکرار نہیں ہے, لہذا ایک ہی طلاق ہوگی تو ایک ہی امر بالید بھی ہوگا بھائی. لہذا پہلے دن اگر عورت نے اس اختیار کو رد کر دیا تو بعد غدن بھی اس کو اختیار نہیں ہوگا. یہ کس کی تقریر چل رہی ہے؟ امام زفر رحمہ اللہ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ خاوند کا یہ قول بمنزلت قولی ہی, یہ خاوند کے اسی قول کے درجے میں ہے انت طالقن الیوم و بعد غدن. قلنا, ہم کہتے ہیں الطلاق لا يحتمل التوقیت. توقیت کا معنی ہے وقت متعین کرنا. تو ہم کہتے ہیں الطلاق لا يحتمل التوقیت کہ طلاق جو ہے وہ تعین وقت کا احتمال نہیں رکھتی. طلاق تعین وقت کا احتمال نہیں رکھتی. جب ایک زمانے میں طلاق دے دی جائے تو تمام زمانوں میں پھر وہ طلاق ہی ہے. یہ نہیں کہ آج طلاق دی ہے تو آج تو عورت طلاق والی ہے, اگلے دن وہ طلاق والی نہیں ہے. جب وہ آج طلاق والی ہے تو کل بھی طلاق والی, پرسوں بھی ترسوں بھی. تو معلوم ہوا طلاق تعین وقت کو قبول نہیں کرتی. لیکن امر کی بیدی کی کسی کے اختیار میں معاملہ دینا, یہ توقیت کو یعنی تعین وقت کو قبول کر لیتا ہے. کسی کو آپ اختیار دیتے ہیں ایک دن کے لیے, دو دن کے لیے یا تین دن کے لیے, تو اسی دن اختیار ہوگا, بعد میں اختیار نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا امر بالید وہ توقیت کو قبول کر لیتا ہے یعنی تعین وقت کو, لیکن طلاق تعین وقت کو قبول نہیں کرتی. لہذا اے امام زفر, آپ کا امر بالید کو طلاق پر قیاس کرنا صحیح نہیں, کیونکہ دونوں میں فرق ہے. طلاق وہ تعین وقت کو قبول نہیں کرتی, اور امر بالید تعین وقت کو قبول کر لیتا ہے. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ خاوند اپنی بیوی کو اختیار دیتا ہے امر کی بیدی کی, تو خاوند کی مرضی ہے ایک گھنٹے کا اختیار دے, دو گھنٹے کا اختیار دے, ایک دن کا اختیار دے, دس دن تک اختیار دے. تو دیکھا امر بالید کیا ہے, وہ تعین وقت کو قبول کر لیتا ہے, لیکن طلاق جو ہے وہ تعین وقت کو قبول نہیں کرتی. جب عورت کو طلاق دے دی تو وہ طلاق والی ہو گئی, اب وہ کل بھی طلاق والی ہے, پرسوں بھی, ترسوں بھی, ہر دن میں. تو لہذا دونوں میں فرق ہے, لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے. قلنا, ہم کہتے ہیں الطلاق لا يحتمل التوقیت کہ طلاق جو ہے وہ تعین وقت کا احتمال نہیں رکھتی. والامر بالید يحتمله اور امر بالید جو ہے وہ تعین وقت کا احتمال رکھتا ہے. فیوقت الامر بالاول, لہذا یہ امر جو ہے یوقت, یہ اس کا وقت متعین ہو جائے گا بالاول, اول وقت کے ساتھ. خاوند نے کیا کہا؟ امرو کی بیدی کی الیوم و بعد غدن. تو یہ جو امرو کی بیدی کی, یہ اول وقت کے ساتھ متعین ہو جائے گا. یعنی یہ والا اختیار آج کے دن ہے, اور بعد غدن کے لیے ایک اور امر وہاں ہم نکال لیں گے. وہاں ایک اور یہ مانا ہے فیوقت الامر بالاولی. تو یہ امر بالید جو ہے, یہ جو خاوند نے ذکر کیا, یہ موقت ہو جائے گا یعنی مقید ہو جائے گا بالاولی, ای بالوقت الاولی, پہلے وقت کے ساتھ. ویجعل الثانی امرا مبتدا, اور وہ جو دوسرا ہے یعنی جو دوسرا وقت ذکر کیا خاوند نے بعد غدن, یجعل الثانی امرا مبتدا, اس وقت ثانی جو ہے اس کو امرا مبتدا, ایک نیا امر قرار دیا جائے گا, وہ ایک الگ اختیار قرار دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے وَلَوْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا، آپ درمیان میں فصل نہیں ہے، خاوند بیوی بی سے کہتا ہے أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا، تجھے آج بھی اختیار ہے اور کل بھی، درمیان میں فصل نہیں، تو معلوم ہوا ایک ہی اختیار ہے، تو اگر عورت نے آج رد کر دیا تو کل پھر اس کو اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی اختیار تھا، دو الگ اختیار نہیں تھے بھائی. وَلَوْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا، اور اگر خاوند نے بیوی سے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، الْيَوْمَ آج کے دن بھی، وَغَدًا اور کل بھی، يَدْخُلُ اللَّيْلُ فِي ذَلِكَ، تو رات بھی اس میں داخل ہے، گویا خاوند دو دن کا اختیار دے رہا ہے، تو طبعاً رات بھی ساتھ شامل ہو جائے گی، دونوں وقت الگ الگ نہیں ہے بلکہ ان کو مسلسل ہی شمار کیا جائے گا. گویا خاوند نے یوں کہا ہے تجھے دو دن تک اختیار ہے، تجھے دو دن تک. تو کہتے ہیں يدخل الليل في ذلك، رات بھی اس میں داخل ہو جائے گی. وان ردت الامر في يومها، اور اگر عورت نے اس امر کو رد کر دیا، في يومها اپنے اس دن میں، یعنی آج کے دن میں، لا يبقى الامر في يدها في الغد، تو امر اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہے گا، في الغد کل بھی، آج اگر اس نے رد کر دیا تو کل اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی اختیار تھا، کل کے لیے کوئی الگ اختیار نہیں تھا بھائی. لأن هذا امر واحد، اس لیے کیونکہ یہ ایک ہی امر تھا، یعنی ایک ہی امر بالید تھا. لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورتين وقت من جنسهما، تخلل کا معنی بیچ میں آنا. لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين، اس لیے کیونکہ ان مذکورہ دو وقتوں کے بیچ میں نہیں آیا. وقت من جنسهما، ایسا وقت جو انہی دونوں کی جنس میں سے ہو. لم يتناوله الكلام، اور اس کو کلام بھی شامل نہ ہو. یہاں کوئی ایسا وقت نہیں آیا جو ان دونوں کے بیچ میں ہو اور کلام اس کو شامل نہ ہو، لہذا اس کو مسلسل ایک ہی شمار کیا جائے گا. وقد يهجم الليل، اب دلیل ذکر کر رہے ہیں گے بھائی کہ رات کیوں داخل ہوگی، تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں وقد يهجم الليل ومجلس المشورۃ لا ينقطع. حجما یحجمو کا معنی ہے اچانک آنا، یہاں آنے کے معنی میں ہے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں رات بھی داخل ہوگی، کیوں؟ کہتے ہیں وقت یحجم اللیل، کبھی رات اچانک آ جاتی ہے، یعنی رات ہو جاتی ہے. وہ مجلس المشورتی لا ينقطع، اور حال یہ ہوتا ہے کہ مجلس مشورہ ابھی ختم نہیں ہوئی، مشورہ بھی چل رہا ہے اور رات آ جاتی ہے، لہذا رات بھی طبعاً داخل ہوگی بھائی. تو کہتے ہیں وقد يهجم الليل ومجلس المشورۃ لا ينقطع، یاد رکھو یہ مشورہ، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی اسی طرح مشورہ لفظ ہے، لیکن عربی میں آپ اس کو مشورہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور شین پر ضمہ اور واو کو ساکن، یعنی مشورتن، مشورہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مشورہ بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وقد يهجم الليل، اور کبھی اچانک رات آ جاتی ہے. وہ مجلس المشورہ لا ينقطع، اور اس حال میں کہ مجلس مشورہ ابھی منقطع نہیں ہوئی ہوتی، یعنی ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی. فصار كما اذا قال، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے خاوند نے یوں کہا ہو. امرک بیدک فی یومین، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے دو دن میں، یعنی دو دن تک تیرے ہاتھ میں ہے بھائی. وعن ابی حنیفہ رحم اللہ، اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے، امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر آج وہ رد بھی کر دے کل پھر اس کو اختیار ملے گا. کل پھر اس کو معلوم ہو اس عورت کے پاس دو اختیار ہیں. یہ ایک روایت ہے بھائی، یہ ایک روایت ہے، لیکن ظاہر روایت میں آ گیا کہ عورت اگر آج رد کر دے گی تو کل اسے اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی اختیار ملا تھا. تو کہتے ہیں وعن ابی حنیفہ رحم اللہ، اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ انہا اذا ردت الامر فی الیوم، کہ اگر عورت نے اس امر کو رد کر دیا آج کے دن میں، لہا ان تختار نفسہا غدن، تو کل کے دن میں بھی اس عورت کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو اختیار کر لے. لانہا لا تملک رد الامر کما لا تملک رد الایقاع، اس لیے کیونکہ لانہا لا تملک رد الامر، کیونکہ عورت جو ہے امر کو رد کرنے کی مالک نہیں ہے. کما لا تملک رد الایقاع، جیسے وہ ایقاع طلاق کو رد کرنے کی مالک نہیں. امام صاحب کے ایک قول آیا کہ عورت آج رد بھی کر دے تو اسے کل بھی پھر بھی اختیار ہوگا، اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ اس کی کیا وجہ ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت رد امر کی مالک نہیں، جیسے وہ رد ایقاع کی مالک نہیں. بھائی خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالقن، تجھے طلاق ہے، عورت کہتی ہے مجھے قبول نہیں، تو مجھے بتائیے کیا عورت اس ایقاع طلاق کو رد کر سکتی ہے؟ نہیں، عورت ایقاع طلاق کو رد نہیں کر سکتی، وہ اس پر ضرور واقع ہو جائے گی. تو جیسے عورت ایقاع طلاق کے رد کی مالک نہیں، اسی طرح امر کے رد کی بھی وہ مالک نہیں ہے. خاوند اس کو اختیار دے رہا ہے اور عورت اس کو رد کر دے کہ نہیں مجھے یہ اختیار نہیں چاہیے. نہیں نہیں، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسے اختیار مل گیا ہے اور مجلس تک اسے اختیار رہے گا، الا یہ کہ وہ صاف لفظوں میں اس اختیار کو رد کرے کہ میں اپنے خاوند کو اختیار کرتی ہوں، میں جدائی کو اختیار نہیں کرتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لأنها لا تملک رد الامر، اس لیے کیونکہ عورت جو ہے امر کو رد کرنے کی مالک نہیں ہے. کما لا تملک رد الایقاع، جیسے کہ عورت ایقاع طلاق کو رد کرنے کی مالک نہیں ہوتی. امام صاحب کی روایت چل رہی ہے کہ آج کے دن رد کیا ہے تو اگلے دن پھر یہ امر ملے گا، اور وہ عورت کے رد کرنے سے رد نہیں، وہ اختیار اس کو ملے گا، وہ پھر اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہے. وجہ ظاہری، اور ظاہر روایت کی وجہ بھائی، ظاہر روایت میں تو کیا آیا کہ آج کے دن عورت رد کر دے تو کل اسے کوئی اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ہی اختیار ہے بھائی. تو اس کی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وجہ ظاہری، ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ انہا اذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد، کہ یہ عورت اذا اختارت نفسها اليوم، کہ جب وہ اپنی ذات کو آج کے دن اختیار کر لے، لا يبقى لها الخيار في الغد، تو اس کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا کل کے دن میں. جی عورت اگر کیا کر لے، اگر خاوند نے تو دو دن کا اختیار دیا ہے، لیکن عورت اگر اپنے آپ کو آج ہی اختیار کر لے تو طلاق بائن آ گئی، نکاح ٹوٹ گیا، تو اگلے دن اسے اختیار نہیں رہے گا کیونکہ نکاح تو ٹوٹ چکا ہے. کیا وہ اگلے دن دوبارہ نکاح میں واپس آ سکتی ہے؟ نہیں، نکاح تو ٹوٹ گیا، تو اگلے دن اختیار کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اختیار دینے کا مقصد ہی کوئی نہیں بنتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جیسے عورت اگر آج اپنے آپ کو اختیار کر لے تو کل اسے اختیار نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے اختیار کو استعمال کر لیا بھائی، کیونکہ ایک ہی اختیار ہے، توجہ ہے، ایک ہی اختیار ہے. جب اس نے آج اپنے آپ کو اختیار کر لیا ہے تو اسے کل اختیار نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آج اس نے خاوند کو اختیار کر لیا ہے، یعنی آج اس نے خاوند کو اختیار کر لیا ہے، یعنی اس امر بالیاد کو رد کر دیا ہے، مجھے امر بالیاد نہیں چاہیے، میں اپنے خاوند کو اختیار کرتی ہوں، تو اگر جیسے عورت اپنی ذات کو اختیار کرتی تھی تو اگلے دن اسے اختیار نہیں رہتا تھا، کیونکہ ایک ہی اختیار ہے. اسی طرح اگر اس نے آج خاوند کو اختیار کر لیا ہے تو اب اسے کل اختیار نہیں رہے گا، کیونکہ ایک ہی اختیار تھا. جب بھی کسی کو دو چیزوں میں اختیار دیا جائے تو وہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کر سکتا ہے اور اختیار اس سے ختم ہو جاتا ہے. تو جب آج کے دن عورت نے خاوند کو اختیار کر لیا تو اس کا اختیار کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وجہ ظاہری، ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ انہا اذا اختارت نفسها اليوم، کہ جب عورت نے اپنی ذات کو آج کے دن اختیار کر لیا تو لا يبقى لها الخيار في الغد، تو اس کے لیے کل اختیار باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ایک ہی اختیار تھا اور جدائی آ چکی ہے. فقد اذا اختارت زوجها، تو اسی طرح ہوگا جب وہ اپنے خاوند کو اختیار کر لے. مثلا آج کے دن اس نے کس کو اختیار کر لیا؟ خاوند کو اختیار کر لیا. یورد الامر، آپ کی کتاب میں بھی یا ہے یورد، یہ یاد رکھیے یہ کتابت کی غلطی ہے، یورد نہیں بی رد الامر، یہ با ہے بھائی با، اور نسخوں میں با یہاں موجود ہے. تو کہتے ہیں فقدا اذا اختارت زوجها برد الامر، تو اسی طرح ہوگا جب عورت اپنے خاوند کو اختیار کر لے، برد الامر، امر کو رد کرتے ہوئے، امر بالید کو رد کرتے ہوئے اپنے خاوند کو اختیار کر لے، تو بھی اسی طرح ہوگا، اگلے دن اسے اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی اختیار ہے دو چیزوں کے درمیان، دو کے، اپنے آپ کو اختیار کر لو یا خاوند کو اختیار کر لو، تو دونوں میں سے ایک کو جب اس نے اختیار کر لیا تو اس کا اختیار پورا ہو گیا. کہتے ہیں لأن المخير بين الشيئين، اس لیے کیونکہ وہ شخص جس کو اختیار دیا جائے دو چیزوں کے درمیان، لا يملك، وہ مالک نہیں ہوتا، الا اختيار احدهما، مگر یہ کہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کرے. تو جب پہلے دن عورت نے خاوند کو اختیار کر لیا تو اب اگلے دن اختیار نہیں ہوگا، اختیار پورا ہو چکا. وعن ابی یوسف رحم اللہ، اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہ اذا قال، کہ جب خاوند نے یوں کہا، امرو کی بیدی کی لیوما و امرو کی بیدی کی غدن، यानी दो दफा अमर बिल यद को जिक्र किया, अमरु की भी यदि की अलयौमा व अमरु की भी यदि की गदन, तो फिर इस सूरत में बिल इतफाक आज के दिन अलग इख्तियार होगा और कल के दिन अलग इख्तियार होगा, क्योंकि अमर बिल यद को खावंद ने यौम के लिए अलग जिक्र किया है और गदन के लिए अलग जिक्र किया है। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ और रहमतुल्लाह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है, अन्नहु इदा काला के खावन ने जब कहा, अमरु की बियदी की लियौमा व अमरु की बियदी की गदन, अन्नहुमा अमरान, ये दो अमर हैं, लिमा अन्नहु जकरा लिकुल्ली वक्तिन खबरन अला हिदतिन, इस वजह से कि खावन ने हर वक्त के लिए अलग खबर जिक्र की है, बेखिलाफ मा तकदमा, बेखिलाफ उसके जो माकबल में गुजरा वहां एक ही अमर बिल यद जिक्र था। तवज्जो है, तो यहां दो वक्त हैं तो दो अमर बिल यद भी साथ जिक्र हैं, तो ये दो अमर हो गए, कितने दो अमर। और याद रखो ये सिर्फ इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह नहीं फरमाते कि इस सूरत में दो अमर हैं, ये इत्तेफाकी मसला है, हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं जब दो वक्तों के साथ दो अलग अलग अमर बिल यद को खावन ने जिक्र किया है तो दो अलग अलग इख्तियार मिल गए औरत को। तो फिर सवाल पैदा होता है, फिर इमाम अबू यूसुफ की तरफ क्यों निस्बत की वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, तो जवाब यह कि ये मसला चूंकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया था इसलिए उनकी तरफ निस्बत कर दी, वरना यह है इत्तेफाकी मसला कि जब दो वक्तों के साथ दो अलग अलग अमर होंगे तो ये दो ही अमर हैं भाई, तो एक अमर को रद्द करने से दूसरा अमर रद्द नहीं होगा, दूसरे का फिर इख्तियार मिलेगा औरत को भाई। आगे देखिए, व इन काला अमरु की बी यदि की यौम यकदमु फुलान उन फकदिम फुलान उन वलम तालम बिकुदूमी हत्ता जन्नल्लैलु फला खियारा लहा। सूरत है मसला ये, खावन ने बीवी से कहा अमरु की बी यदि की यौम यकदमु फुलान उन, तेरा मामला तेरे हाथ में है जिस दिन फुलां आएगा, यानी जिस दिन जैद आएगा, जिस दिन जैद आए तेरा मामला तेरे हाथ में है। अब जैद आया इत्तेफाक से, उस दिन औरत को पता ही नहीं चला, यहां तक कि शाम हो गई, दिन गुजर गया, अब औरत को पता चला कि आज तो जैद आया था, तो क्या अब उसको इख्तियार होगा? कहते हैं नहीं, वक्त गुजर चुका है, खावन ने जो इख्तियार का वक्त दिया था वो वक्त गुजर चुका है, लिहाजा औरत को कोई इख्तियार नहीं होगा। तो कहते हैं वह इन काला, और अगर खामन ने कहा अमरु की बियदी की यौम यकदमु फुलान उनके, तेरा मामला तेरे हाथ में है जिस दिन फुलां आए, फकदिमा फुलान उन वलम तालम बिकुदूमी ही, तो वो फुलां आया और हाल यह है कि औरत को इलम ना हुआ उसके आने का, हता जन्नल लैलू, यहां तक कि रात आ गई। जन्नल लैल का माना है रात का तारीख हो जाना या रात का चीजों को ढांप लेना, रात में तारीकी आती है और तारीकी चीजों को ढांप लेती है, छुपा लेती है, तो जन्नल लैल का क्या माना, रात का तारीख हो जाना, माना यह है यानी रात का आ जाना, रात का आ जाना, तो उस औरत को पता ना चला, हता जन्नल लैलू, यहां तक कि रात तारीख हो गई यानी रात आ गई, फला खियार लहा, तो अब इस औरत को कोई इख्तियार नहीं, ले अन्नल अम्र बिलियदी मिम्मा यमतद्दू, इसलिए क्योंकि अमर बिलियद मीम मा उन अफाल में से है, यम तद जिनमें इम्तिदाद होता है। भाई ये बात पहले गुजर चुकी, चंद सफे कबल ये बात गुजरी थी, एक शख्स ने एक औरत से कहा यौम अतज़व्वजुकी फअंति तालिकुन, यौम अतज़व्वजुकी फअंति, जिस वक्त मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे तलाक है। तो वहां आपको साहिब हिदाया ने तफसील बतलाई थी भाई, वही वो जो जहां पीछे दो अशआर आए थे, वइजा तकूनु करीहतुन उदा लहा व इदा युहासुल हैसु युदा जुंदुबू, और फिर अगला शेर था वस्तग्नि मा अगना का रब्बू का बिलगिना व इदा तुसिब का खसासतुन फतजमली, इसी के बाद चंद सत्रों के बाद आगे आया था कि खावन ने बीवी से कहा यौम अतज़व्वजुकी फअंति तालिकुन, जिस दिन मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे तलाक है, फिर खावन ने रात को इससे निकाह किया, कहते हैं फिर भी तलाक हो जाएगी। वहां साहिब हिदाया ने बतलाया था कि यौम का लफ्ज कभी सुबह से शाम तक ये जो नहार है, जो रोशनी का वक्त है, इस पर बोला जाता है, और कभी यौम का लफ्ज मुतलक वक्त के माना में आता है, और बतलाया था साहिब हिदाया ने जाबता कि जब यौम जर्फ बने फ़ेल मुमतद के लिए, यानी वो फेल जिसमें तूल हो, मैंने बताया था आपको कि अफाल दो किस्म पर हैं, कुछ वो फेल हैं जिनमें इम्तेदाद होता है, तूल होता है, जैसे खावंद बीवी को इख्तियार देता है, ये इख्तियार वो एक घंटे के लिए भी दे सकता है, दो घंटे के लिए भी, तीन घंटे के लिए भी, एक दिन के लिए भी, दो दिन के लिए भी, जितना वक्त वो चाहे इख्तियार दे सकता है। तो मालूम हुआ इख्तियार देना ये क्या है, फेल मुमतद है। इसी तरह रोजा रखना ये भी फेल मुमतद है, ये भी लंबा फेल है, सुबह से शाम तक होता है। इसी तरह चलना ये भी फेल मुमतद है, आप एक घंटा चलें या दो घंटे चलें या तीन घंटे चलें। और कुछ अफाल वो होते हैं जिनमें इम्तिदाद नहीं होता, जैसे तलाक देना। देखो तलाक एक लम्हे में वाके हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता सुबह से शाम तक आराम से तलाक वाके होती चली जा रही है, तो तलाक गैर मुमतद है। इसी तरह निकाह जैसे ही इजाब और कबूल करेंगे निकाह हो जाएगा, तो निकाह भी गैर मुमतद है। तो जब फेले मुमतद के लिए यौम का लफ्ज ज़र्फ़ बने तो फिर यौम नहार के माना में होता है, मालूम हो उसके लिए वो वक्त मेयार है। क्या है? मेयार है, यानी उसकी मुद्दत बयान की जा रही है। और अगर यौम का लफ्ज फेले गैर मुमतद के साथ जिक्र किया जाए तो फिर इस सूरत में यौम मुतलक के वक्त के माना में होता है। और खामन ने क्या कहा, यौम अतज़व्वजुकी फअंति तालिकुन, तो यहां पर ये अंति तालिकुन ये तो फेले गैर मुमतद है, इसके लिए यौम ज़र्फ बन रहा है, तो फिर इस सूरत में ये यौम वक्त के माना में होगा। लिहाजा जिस वक्त भी वो निकाह करेगा तलाक हो जाएगी, चाहे दिन को निकाह करे चाहे रात को निकाह करे। तो यहां पर भी वही बात जिक्र कर रहे हैं कि खावन ने बीवी से क्या कहा है, अमरू की भी यदि की यौम यकदमु फुलान, तेरा मामला तेरे हाथ में है जिस दिन फुला आ जाए। अब मामला किसी के हाथ में होना यह तो फिले मुमतद है, एक घंटे तक भी मामला दूसरे के हाथ में हो सकता है, दो घंटे तक भी, तीन घंटे तक भी, तो ये फेले मुमतद है। और फेले मुमतद के साथ यौम का लफ्ज जिक्र हो रहा है, यौम यकदमु फुलान, ये उसके लिए ज़र्फ बन रहा है, तो इससे नहार मुराद होगा। और अब तो रात आ गई है, नहार तो गुजर चुका है, लिहाजा औरत का इख्तियार भी खत्म हो चुका है। तो कहते हैं ली अन अल अमर बिल यदि मिम्मा यमतद्दु, इसलिए क्योंकि अमर बिल यद जो है मिम्मा यमतद्दु ये उन अफाल में से है जो मुमतद होते हैं। फयुहमलुल यौमुल मकरून बिही अला बयाज़िन नहारी, तो महमूल किया जाएगा उस यौम के लफ्ज को, अल मकरून बिही जो इसके साथ मिला हुआ है, अला बयाज़िन नहारी दिन के उजाले पर, दिन की रोशनी पर, कि इसे दिन मुराद है। वकद हक्कनाहु मिन क़ब्लु, और तहकीक हम ये साबित कर चुके हैं, मिन क़ब्लु पहले भाई, ये मैंने मसला जिक्र कर दिया। फयतवक्कतु बिही, लिहाजा ये अमर बिल यद मुकय्यद हो जाएगा बिही इस यौम यानी नहार के साथ, यानी नहार में सिर्फ अमर बिल यद होगा औरत को। सुम्म यनक़ज़ी बिन्क़िज़ाई वक़्तिही, और फिर ये अमर बिल यद गुजर जाएगा अपने वक्त के गुजरने से, जब इसका वक्त गुजर जाएगा तो अमर बिल यद भी गुजर जाएगा, अब औरत को इख्तियार नहीं। वह ईदा जाला अमरहा बियदिहा औ खय्यरहा फम्मा कसत यौमन वलम तकुम फल अमरुफी यदिहा मालम तखुतवी अमलिन आखर। भाई आपने पढ़ा है कि खावन जब बीवी को तलाक का इख्तियार देता है यानी तलाक का मालिक बनाता है तो वो इख्तियार मजलिस तक रहता है, इल्ला यह कि कोई खास वक्त खावन खुद जिक्र कर दे, जैसे पिछले मसले में था कि आज के दिन तुझे इख्तियार है और कल भी तुझे इख्तियार है। तो अगर वक्त खावन जिक्र न करे तो फिर इख्तियार मजलिस तक रहता है, और मजलिस जितनी भी लंबी हो जाए औरत को इख्तियार रहेगा। हत्ता के खावन ने बीवी से कहा तेरा मामला तेरे हाथ में है, औरत को इख्तियार मिल गया, औरत को मसले का पता था कि मैं जब तक मैं इस मजलिस में हूं मुझे इख्तियार है। चुनाचे एक सारा दिन गुजर गया, सारी रात गुजर गई, औरत वहीं बैठी हुई है, जितना भी वक्त गुजर जाए इख्तियार औरत के पास है, इल्ला ये कि वो कोई और अमल शुरू कर दे जो एराज पर दलालत करे, या वहां से उठ जाए मजलिस ही खत्म कर दे, फिर वो इख्तियार खत्म होगा। कहने का मतलब यह है मजलिस जितनी भी तवील हो जाए वो इख्तियार औरत को रहेगा। तो कहते हैं वईदा जाला अमरहा बियदिहा औ खय्यरहा, और अगर खावन ने औरत का मामला उसके हाथ में दे दिया, औ खय्यरहा या उसे इख्तियार दे दिया यानी इख्तारी नफ्सकी उसे कह दिया, फम्मा कसत यौमन, तो वो औरत एक दिन ठहरी रही, वलम तकुम और न उठी, فل امر فی یدیہا, تو معاملہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے. مالم تاخذ فی عمل آخر, جب تک وہ کسی دوسرے کام میں شروع نہ ہو جائے, جب تک وہ کوئی دوسرا کام شروع نہ کر دے. لئن ھذا تملیک التطلیق منھا, اس لیے کیونکہ یہ جو ہے خاون کی طرف سے اس کو تطلیق کا مالک بنانا ہے. بھائی صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی, فصل فی الاختیار کے شروع میں, کہ اس کے اندر اختیاری کے اندر خاوند کیا کر رہا ہے, عورت کو طلاق کا مالک بنا رہا ہے, ایک فعل کا مالک بنا رہا ہے, اور تملیکات مجلس کے اندر ہی جواب کا تقاضا کرتی ہیں. آپ کسی شخص کو کوئی چیز بیچتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کو میں نے 100 روپے میں بیچ دی, تو گویا آپ اس کو مالک بنا رہے ہیں, یا آپ نے ایجاب کر دیا, تو اسی مجلس کے اندر قبول ضروری ہے. اگر وہ دوسرا شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو یہ ایجاب باطل ہو جائے گا. بعد میں وہ آ کر کہے مجھے قبول ہے, نہیں بھائی اب تو ایجاب ختم ہو چکا. تو معلوم ہوا تملیکات جواب کا تقاضا کرتی ہیں اسی مجلس میں. اور خاوند جو عورت کو کہا ہے امر کی بیدی کی, یہ اختاری نفس کی, تو اس میں خاوند نے اس عورت کو طلاق کا مالک بنایا ہے, تو لہذا یہ تملیق تطلیق ہے, اور تملیق جواب کا تقاضا کرتی ہے اسی مجلس میں, لہذا اسی مجلس تک عورت کو اختیار ہوگا, مجلس کے بعد اختیار نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں لِأَنَّ هَذَا تَمْلِيكُ التَّطْلِيقِ مِنْهَا, اس لیے کیونکہ یہ تطلیق کا مالک بنانا ہے, مینہا اس عورت کو. لِأَنَّ الْمَالِكَ مَنْ يَتَصَرَّفُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ, اس لیے کیونکہ مالک وہ ہوتا ہے جو تصرف کرے بِرَأْيِ نَفْسِهِ, اپنی رائے سے. مالک کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی رائے سے تصرف کرتا ہے. تو کہتے ہیں لِأَنَّ هَذَا تَمْلِيكُ التَّطْلِيقِ مِنْهَا, اس لیے کیونکہ یہ عورت کو تطلیق کا مالک بنانا ہے. لِأَنَّ الْمَالِكَ مَنْ يَتَصَرَّفُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ, اس لیے کیونکہ مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی رائے سے تصرف کرتا ہے. وَهِيَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ, اور عورت بھی اسی صفت پر ہے, وہ بھی اپنی رائے سے فیصلہ کرے گی. وَالتَّمْلِيكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ, اور تملیکات جو ہیں وہ تو مجلس پر بند رہتی ہیں. وقت بیناہ من قبل, اور تحقیق اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, میں نے بتلا دیا کہ اختیار کی فصل جہاں شروع ہوئی تھی گزشتہ سبق میں وہیں ذکر تھا. بھائی آگے دیکھیے, ثم اذا كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك وان كانت لا تسمع فمجلس علمها او بلوغ الخبر اليها, پھر یہ عورت اگر سن رہی ہے تو پھر تو اسی مجلس کا اعتبار ہے جس میں عورت اس وقت ہے, اور اگر وہ نہیں سن سکتی, مثلا بہری ہے یا وہاں موجود نہیں ہے, خاوند نے کسی اور کے سامنے کہا ہے کہ میری بیوی کا معاملہ میری بیوی کے ہاتھ میں ہے, توجہ ہے, تو پھر کہتے ہیں جس مجلس میں عورت کو پتا چلے گا اس مجلس میں اس کو اختیار مل جائے گا, توجہ ہے, اور خاوند اسے رجوع نہیں کر سکتا. خاوند نے ایک دفعہ کہہ دیا میں نے بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا, بس بھائی بات خاوند کے اختیار سے نکل گئی. اب جس مجلس میں عورت کو اس اختیار کا پتا چلے گا اس کو اختیار مل جائے گا, اور مجلس کے اختتام تک رہے گا, اور وہ اپنے آپ کو خاوند سے جدا کر سکتی ہے. اور یاد رکھو آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ یہاں پر بیوی کی مجلس کا اعتبار ہے, خاوند کی مجلس کا اعتبار نہیں. خاوند نے بیوی سے کہا امر کی بیدی کی, تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے, اور یہ کہہ کر خاوند اٹھ کر چلا گیا اور بیوی وہیں بیٹھی ہے, تو اعتبار کس کی مجلس کا ہے؟ عورت کی, کیونکہ مالک وہ بنی ہے اس اختیار کی. لہذا وہ جب تک اس مجلس میں ہے اس کو اختیار ہے, خاوند کی مجلس کا اعتبار نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آگے, اور میں نے آپ کو بتلایا کہ جب خاوند اختیار دے دیتا ہے معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا, اب وہ رجوع نہیں کر سکتا. خاوند اور بیوی بیٹھے ہوئے ہیں, بحث چل رہی ہے, اور خاوند کہتا ہے کہ امر کی بیدی کی, تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے, پھر فوراً کہتا ہے نہیں نہیں تمہارے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہے, نہیں بھائی اب رجوع نہیں ہو سکتا, آپ نے جو عورت کو اختیار دیا ہے آپ اس کو فسخ نہیں کر سکتے, معاملہ عورت کے ہاتھ میں جا چکا ہے اور وہ مجلس تک رہے گا. تو کہتے ہیں ثم اذا كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك, پھر اگر وہ عورت سنتی ہے یعنی سننے والی ہے یا وہ اس اختیار کو سن رہی ہے, تو يعتبر مجلسها ذلك, تو اس عورت کی وہی مجلس معتبر ہے جس میں اس نے یہ بات سنی ہے. وان كانت لا تسمع, اور اگر وہ عورت نہیں سن رہی, मसलन बहरी है या किसी और जगह है, फमजलिसु इल्मी हा, तो फिर उसकी मजलिस इलम मोतबर है, यानी जिस मजलिस में उसको इस बात का इलम होगा, इस बात का पता चलेगा। और बुलूग इल खबरी इलैहा, या वो मजलिस जिसके अंदर उसको यह खबर पहुंचेगी। लिअन्नहादा तमलीक उन फी ही मानत तालीक, कहते हैं इसलिए क्योंकि ये ऐसी तमलीक है, फी ही मानत तालीक, जिसमें तालीक वाला माना भी है। खावन ने कहा अमरु की भी यदि की ये तमलीक है, वो उसे तलाक का मालिक बना रहा है, लेकिन ये ऐसी तमलीक है जिसमें तालीक भी है, यानी बाज एतबार से देखें तो ये तमलीक है और बाज एतबार से देखें तो ये तालीक है। याद रखो तमलीकात में रुजू हो सकता है, तमलीक में रुजू हो सकता है। मसलन आप किसी से कहते हैं ये किताब मैंने आपको 100 रुपए में बेच दी, ये क्या है? तमलीक है, क्योंकि बै में मुश्तरी मबिया का मालिक बन जाता है। तो ये आप तमलीक कर रहे हैं, उसको मालिक बना रहे हैं, और तमलीक में रुजू हो सकता है। अभी उसने कबूल नहीं किया था कि आप फौरन कहते हैं नहीं नहीं भाई मैं ये किताब नहीं बेचना चाहता, बस भाई आपने रुजू कर लिया, अब वो कबूल कह भी दे, अब बै नहीं हुई, क्योंकि आपने तमलीक से क्या कर लिया? रुजू कर लिया। लेकिन तालीक से रुजू नहीं हो सकता। खावंद अगर अपनी बीवी से कहे इन दखलती दार अफानती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, फिर कहते हैं नहीं 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 तुम्हें तलाक नहीं है, नहीं भाई अब वापसी नहीं हो सकती, अब तलाक मुअल्लक हो गई उस घर में दाखिल होने के साथ, तमाम जिंदगी में जब भी वो औरत उस घर में जाएगी तलाक वाकई हो जाएगी, तलाक वाकया हो जाएगी। मालूम हुआ तालीक जो है उसमें रुजू नहीं हो सकता, उसको फसख नहीं किया जा सकता, लेकिन तमलीक जो है वो रुजू का एहतमाल रखती है। तो आपको साहिब हिदायत बतलाएंगे कि ये जो खावन ने कहा है इख्तारी या अमरु की भी यदि की, ये खावन औरत को तलाक का मालिक बना रहा है, लेकिन ये तमलीक के साथ साथ तालीक भी है, ये तमलीक के साथ साथ तालीक भी है। गोया खावन ने उस औरत से यूं कहा है इन तलकती नफ्सा की फंती तालिकुन, खावन ने क्या कहा अमरु की भी यदि कि तेरा मामला तेरे हाथ में है, गोया खावन ने यूं कहा है इन तलकती नफ्सा की फंती तालिकुन, अगर तूने अपने आप को तलाक दी तो तुझे तलाक है, तालीक बना रहा हूं ना शर्त और जजा बना रहा हूं, खावन ने तो इख्तियार दिया लेकिन यह तालीक भी है। गोया खावन यूं कह रहा है इन तलकती नफ्सकी फअंती तालिकुन, अगर तूने अपने आप को तलाक दे दी तो तुझे तलाक है, तो वो अगर अपने आप को तलाक देगी तो तलाक हो जाएगी, तो गोया ये तालीक भी है, ये क्या है? मीन वजह तमलीक है और मीन वजह तालीक है, लिहाजा इसे खावन रुजू नहीं कर सकता भाई। तो कहते हैं ली अन्नहादा तमलीक उनफी हिमानत तालीक, इसलिए क्योंकि ऐसी तमलीक है जिसके अंदर तालीक वाला माना भी है। फयतवक्कफु अला मा वरा अल मजलिसी, तो लिहाजा ये मजलिस के पीछे भी यानी मजलिस के बाद भी मौकूफ रहेगी। बात ये चल रही है कि अगर औरत के सामने खावंद ने यह कहा तो औरत की मजलिस मोतबर है, लेकिन अगर खावंद ने लेकिन अगर वो औरत नहीं सुन रही, उसे नहीं पता वो बहरी है, या खावन ने किसी और के सामने ये कहा, खावन ने सुबह कहा था औरत को शाम को पता चला जी। शाम को पता चला और सुबह से शाम तक औरत की तो कितनी ही मजलिसें बदल गई होंगी, लेकिन कहते हैं जिस मजलिस में औरत को खबर मिलेगी उसको इलम होगा उस मजलिस का एतबार है। तो भाई खावन ने तो सुबह इख्तियार दिया था, वो तो मजलिस तक रहता है। कहते हैं भाई हमने आपको बता दिया कि ये इख्तियार जो दिया है ये तमलीक है बाज एतबार से, तो बाज एतबार से तालीक है, और तालीक मजलिस तक नहीं रहती, मजलिस के बाद भी रहती है। खावन ने बीवी से कहा इन दखलती दार अफानती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो देखो ये उसी मजलिस तक है या जब भी जिंदगी में वो औरत जाएगी तो तलाक हो जाएगी, जब भी जिंदगी में वो औरत जाएगी तलाक हो जाएगी। तालीक जो है मजलिस तक नहीं रहती, तालीक जिंदगी भर के लिए हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो यहां भी खावन ने जब उसका मामला उसके हाथ में दिया है तो बाज एतबार से देखें ये तमलीक है और तमलीक तो मजलिस तक रहती है, लेकिन दूसरे एतबार से देखें तो ये तालीक भी है और तालीक तो मजलिस के बाद भी रहती है। लिहाजा खावन ने बेशक सुबह कहा था लेकिन मजलिस के बाद भी ये तालीक बाकी है, औरत को शाम को पता चला है तो अब उसको इख्तियार मिल गया। बात समझ में आ रही है? कि खामन ने कब कहा था, सुबह कहा था या कल कहा था, बीबी को आज पता चला है, तो चूंकि यह तालीक भी है और तालीक तो मजलिस के बाद भी बाकी रहती है, इसलिए कल से अभी तक यह बाकी है। तो कहते हैं लिअन्ना हादा तमलीक फीहि माना तालीक, इसलिए क्योंकि ऐसी तमलीक है जिसमें तालीक वाला माना भी है। फयतवक्कफु अला मा वरा अल मजलिसी, तो लिहाजा ये मजलिस के मां बाद पर भी मौकूफ रहेगा। वला युतबरु मजलिसुहु, और खावन की मजलिस का कोई एतबार नहीं है। लिअन्ना तालीक लाजिम फी हक़िही, इसलिए क्योंकि तालीक जो है वो लाजिम हो जाती है खावन के हक में। खावन ने जब बीवी से कहा इन दखलती दार अफ अंत तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो क्या यह सिर्फ खावन की मजलिस तक यह तालीक है या जिंदगी भर के लिए तालीक है? यह जिंदगी भर के लिए तालीक हो गई, औरत जब भी उस घर में जाएगी तलाक वाके हो जाएगी। मालूम हुआ तालीक जो है वह खावन के हक में लाजिम हो जाती है, उसका उसकी मजलिस से कोई ताल्लुक नहीं होता, खावन अब उससे रुजू नहीं कर सकता, उसको फसख नहीं कर सकता। भाई कहते हैं लिअन्न तालीक लाजिम फी हक़िही, इसलिए क्योंकि तालीक जो है वो खावन के हक में लाजिम हो जाती है, यानी वो उससे फसख भी नहीं कर सकता और उससे रुजू भी नहीं कर सकता। बिखिलाफिल बैय, बखिलाफ बैय के, लिअन्नहु तमलीकुन महज़ुन, वो महज़े तमलीक है। बैय जो है वो तमलीक महज है, वहां तालीक नहीं, लिहाजा वहां ईजाब सिर्फ मजलिस तक रहेगा, मजलिस के बाद नहीं रहेगा। तो कहते हैं बिखिलाफ इल बैय, बखिलाफ बैय के, लिअन्नहु तमलीकुन महज़ुन, इसलिए क्योंकि वह तमलीक महज है, लिहाजा उसके अंदर दोनों की मजलिस मोतबर है, ईजाब करने वाले की भी और कबूल करने वाले की भी, एक ही भी मजलिस बदलेगी तो तमलीक खत्म हो जाएगी, ईजाब बातिल हो जाएगा। शाबा अशुबू का माना है एक शय का दूसरी शय के साथ मिल जाना, यानी आमेजिश, आमेजिश। तो कहते हैं बिखिलाफिल बैय, बखिलाफ बैय के, लिए अन्नहु तमलीकुन महज़ुन, क्योंकि बैय जो है वो तो महज़े तमलीक है। वला यशुबुहु तालीकु, और उसके साथ तो तालीक की आमेजिश नहीं है। वह इदातु बिरा मजलिसुहा, और जब उस औरत की मजलिस मोतबर है, फल मजलिस उतारा तई यतबद्दलु बित्तहव्वुली, तो कभी कभार मजलिस बदल जाती है बित्तहव्वुली, पलट जाने से, यानी उस जगह से हट जाने से। उमर रतन बिल अफसिफी अमलिन आखरा, और कभी कभार मजलिस बदल जाती है किसी दूसरे काम में शुरू होने से। अला मा बैन्ना हुफिल खियारी, बवजह उसके जो हमने खियार में बयान कर दिया। पीछे जिक्र किया था कि मजलिस अकल और है, मजलिस मुनाजरा और है, और मजलिस किताल और है, तो जब कोई और काम शुरू करेंगे तो मजलिस बदल जाती है। तो मजलिस कभी बदलती है उस जगह से हट जाने से, और कभी मजलिस बदल जाती है किसी दूसरे काम में शुरू होने से। अला मा बैन्ना हुफिल खियारी, बवजह उसके जो हमने खियार के अंदर बयान कर दिया था। वयखरुजुल अम्रु मिन यदिहा बिमुजर्रदिल क़ियामी, और मामला औरत के हाथ से निकल जाएगा बिमुजर्रदिल क़ियामी, महज उठने से ही। लिअन्नहु दलीलुल इराज़ी, क्योंकि औरत का उठना यह उसके एराज की दलील है कि वो इस बात से मुंह मोड़ रही है, उसे यह बात पसंद नहीं आई। इदिल क़ियाम युफर्रिकुर रया, इसलिए क्योंकि क़ियाम जो है वो राय को मुतफर्रिक कर देता है, यानी उठने से राय मुंतशिर हो जाती है। भाई अगर आप किसी बात पर गौर कर रहे हैं तो अगर खड़े हुए हैं और बैठ जाएंगे तो बैठने से राय ज्यादा बनेगी, इत्मीनान से आप बैठकर गौर करेंगे, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं और खड़े होते हैं तो खड़े होने से राय मुंतशिर होती है, राय मुजतमिअ नहीं होती, राय बनती नहीं है, बल्कि राय मुंतशिर हो जाती है। तो लिहाजा औरत का भी उठना यह एराज की दलील है। मालूम हो अगर वो अपनी राय बनाना चाहती तो वो बैठती भाई, लेकिन ये तो उठ गई, और उठने से तो राय क्या होती है, मुंतशिर होती है, लिहाजा ये एराज की दलील है भाई। तो कहते हैं ईदिल क़ियाम युफर्रिकुर रया, इसलिए क्योंकि क़ियाम जो है यह राय को मुंतशिर कर देता है। बिखिलाफी मा इदा मकसत यौमन लम तकुम, बखिलाफ उस सूरत के कि जब औरत ठहरी रही यौमन एक दिन, लम तकुम उठी नहीं, जब एक दिन बैठी रही और उठी नहीं तो फिर सारा दिन उसको इख्तियार रहेगा भाई। तो कहते हैं बेखिलाफी मा ईदा मकसत यौ मन लम तकुम, बखिलाफ उस सूरत के जब औरत बैठी रही एक दिन, लम तकुम उठी नहीं, वलम ताखुद फी अमलिन आखरा, और किसी दूसरे काम में भी शुरू नहीं हुई। लिअन्न अल मजलिस कद यतूलु वकद यक्सुरु, इसलिए क्योंकि मजलिस कभी लंबी हो जाती है, वकद यक्सुरु और कभी छोटी होती है। فیبقا تو یہ عورت کو اختیار رہے گا الا ایو جد ما یقطعه یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز پائی جائے جو اس مجلس کو کاٹ دے او یدل علی الاعراض یا کوئی ایسی چیز پائی جائے جو اعراض پر دلالت کرے تو تب تک وہ معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو اختیار ہے وقوله مکست یوما لیس للتقدیر به بھئی اوپر متن میں آیا تھا فمکست یوما ولم تقم سارا دن وہ بیٹھی رہی اور اٹھی نہیں اٹھی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی دن تک اختیار رہے گا نہیں نہیں یہ بطور مثال کے ذکر کیا ہے چاہے سارا دن وہ بیٹھی رہی تو اختیار ہے اگر اگلی ساری رات بھی وہ بیٹھی رہی پھر بھی اختیار ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جو دن کا ذکر ہے یہ کوئی تحدید کے طور پر نہیں ہے بلکہ مثال کے طور پر ہے تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ مَقَسَتْ يَوْمًا اور امام محمد رحمہ اللہ نے جو جامع صغیر میں مَقَسَتْ يَوْمًا فرمایا ہے لَيْسَ لِتَقْدِیرِ بِهِ اَيْ بِالْيَوْمِ حاضر امیر کس کو راجے یوم کو لَيْسَ لِتَقْدِیرِ بِهِ وہ اس دن کے ساتھ اندازہ لگانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بطور مثال کے ہے بھئی وَقَوْلُهُ اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ کا قول جو ہے مَا لَمْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ آخَرَ امام محمد رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تک وہ اٹھی نہیں فَالْأَمْرُ فِي يَدِهَا مَا لَمْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ آخر یہ پیچھے متن میں گزری ہے یہ بات تو اس سے ہر عمل مراد نہیں ہے بلکہ ایسا عمل ہے جس سے قطع کا پتہ چلے وہ عمل کیا کر دے ایسا عمل جو مجلس کے قطع مجلس کے ٹوٹنے کی خبر دے کہ دوسری طرف متوجہ ہو گئی ہے عورت بھائی اور اگر کوئی فیل تو عورت نے کیا لیکن وہ قطع مجلس پر دلالت نہیں کر رہا مثلا وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے پانی پی لیا یا اسی طرح اس نے چند صورتیں قرآن کی چھوٹی پڑھ لی بھائی تو یہ کام مجلس بدلنے والے نہیں ہیں ہاں کوئی اور کام مثلا اس نے موبائل نکالا اور اپنی والدہ کو فون کر کے ان کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دی یہ تو معلوم ہوا یہ کیا کر رہی ہے اعراض کر رہی ہے تو اس کا یہ عمل مجلس کو بدل دے گا معلوم ہوا پہلے مجلس مذاکرہ طلاق والی تھی اور اب مجلس بدل گئی تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول جو ہے مَا لَمْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ آخَرَ جب تک وہ کسی دوسرے کام میں شروع نہ ہو جائے یہ جو قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا يُرَادُ بِهِ عَمَلٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ قَطَعَ لِمَا كَانَتْ فِيهِ اس سے مراد جو ہے ایسا عمل ہے يُعْرَفُ جسے یہ معلوم ہو کہ أَنَّهُ قَطَعَ لِمَا كَانَتْ فِيهِ کہ اس عمل نے کاٹ دیا ہے اس چیز کو جس میں وہ تھی یعنی جس حالت میں وہ تھی لا مطلق العمل اس سے مطلق عمل مراد نہیں ہے ولو کانت قائمتن فجلست صورت مسئلہ یہ خاوند نے بیوی کو اختیار دیا بیوی کھڑی ہوئی تھی وہ بیٹھ گئی تو کیا بیٹھنے سے اختیار ختم ہو گیا کہتے ہیں نہیں بیٹھنے سے رائے اچھی بنتی ہے لہذا یہ اعراض کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ تو زیادہ متوجہ ہونے کی دلیل ہے لہذا کھڑی ہوئی تھی اور بیٹھ گئی پھر بھی اس کو اختیار ہے ولو کانت قائمتن اور اگر وہ عورت کھڑی تھی فجلست تو پھر وہ بیٹھ گئی یعنی امر بالید کے خاوند کے اختیار دینے کے بعد فہی علی خیارہا تو یہ عورت اب بھی اپنے اختیار پر ہے لانه دلیل الاقبال اس لیے کیونکہ بیٹھنا یہ تو متوجہ ہونے کی دلیل ہے فان القعود اجمع للرائی اس لیے کیونکہ بیٹھنا جو ہے یہ اجمع للرائی ہے یہ رائے کو زیادہ بناتا ہے رائے کو زیادہ جمع کرتا ہے اس سے رائے اچھی بنتی ہے اور اٹھنا کیا ہے رائے کو منتشر کرتا ہے کہتے ہیں فَإِنَّ الْقُعُودَ أَجْمَعُ لِلرَّأْيِ اس لیے کیونکہ بیٹھنا جو ہے یہ رائے کو زیادہ بنانے والا ہے وَكَذَا إِذَا كَانَتْ قَاعِدَةً فَاتَّكَأَتْ أَوْ مُتَّكِئَةً فَقَعَدَتْ بھئی عورت بیٹھی ہوئی تھی خاوند نے اختیار دے دیا عورت نے ٹیک لگا لی یہ اس کا برعکس ہوا عورت نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور خاوند نے اسے اختیار دیا اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تو کیا اس سے اختیار ختم ہوگا کہتے ہیں نہیں اس سے بھی اختیار ختم نہیں ہوگا بھائی کیونکہ مجلس نہیں بدلی وہیں پر ہے بھائی اور نہ کوئی اعراض والی دلیل پائی گئی ہے تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا كَانَتْ قَاعِدَةً اور اسی طرح ہے مسئلہ جب وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی فَتَّكَأَتْ फिर उसने तकिया लगा लिया, टेक लगा ली, अमुत्तकी आतन, या इस औरत ने तकिया लगाया हुआ था, टेक लगाई हुई थी, फाका आदत, तो ये बैठ गई, यानी फिर भी इसको इख्तियार है, ले अन्नहादन तिकाल मिन जल सतिन इला जल सतिन, इसलिए क्योंकि ये मुंतकिल होना है, एक बैठने से दूसरे बैठने की तरफ, एक हालत से दूसरी हालत की तरफ बदली है, फला यकून एराजन, तो ये एराज नहीं है, कमा इदाकानत मुहतबियतन फतरब बात, ये ऐसे ही है जैसे कि औरत मुहतबिया हो, फतरब बात, फिर वो तरबो कर ले, इहतिबा, इहतिबा इसको कहते हैं कि आदमी जमीन पर इस तरह बैठे कि अपने दोनों घुटने मिला ले अपने सीने के साथ और फिर हाथों के साथ दोनों घुटनों को पकड़ ले, या बाज औकात किसी कपड़े वगैरह के जरिए भी इन घुटनों को सीने के साथ बांध दिया जाता है, तो इसको कहते हैं इहतिबा। और तरबा का माना है चौंकड़ी मारकर बैठना, इसी को कहते हैं चार जानों बैठना, ये इसी को कहते हैं आलती पालती मारकर बैठना, तो ये सब का माना क्या है, चौंकड़ी मारकर बैठना, इसको अरबी में तरबुअ कहते हैं, तरबुअ। तो कहते हैं कमा इदाकानत मुहतबियतन फतरबअत, कहते हैं ये इसी तरह है जैसे औरत मुहतबिया थी, वो इहतिबा की हालत में बैठी हुई थी, फतरबअत, फिर वो चौंकड़ी मारकर बैठ गई, तो इससे उसका इख्तियार खत्म नहीं होता। قال رضي الله تعالى عنه وهذا رواية الجامع الصغير وذكر في غيره أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيار لها। साहिब हिदाया फरमा रहे हैं, काला, काला से मुराद साहिब हिदाया है, काला रजी अल्लाह ताला अन्हु, साहिब हिदाया फरमाते हैं, वहादा रिवायतुल जामिअ सगीरी, की जामे सगीर की रिवायत है, ये जो ऊपर आया ना कि अगर वो बैठी हुई थी और टेक लगा ली, या टेक लगाई हुई थी और बैठ गई, तो इनसे इख्तियार बातिल नहीं होगा, ये जामे सगीर की रिवायत है। वजू की रफी गैरी ही, और इसके अलावा और किताबों में जिक्र है कि अन्नहा इदा कानत काइदा तन, कि अगर वो औरत बैठी हुई थी, फत्ता का अत, फिर उसने तकिया लगा लिया, ला खियार लहा, अब इसको कोई इख्तियार नहीं, लियानल इत्तिका इजहारु तहावुनी बिल अमरी, तहावुन का माना है किसी बात को हकीर और मामूली समझना, यानी उसकी परवाह न करना। तो कहते हैं लियान नल इतिका इजहार उत्तहावुन बिल अमरी, इसलिए क्योंकि तकिया लगाना यह इजहार है तहावुन बिल अमर की, इस अमर बिलियत को हकीर और मामूली समझने का इजहार है तकिया लगाना, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बास किताबों में है कि अगर वो बैठी हुई थी और उसने टेक लगा ली, तो उसको कोई इख्तियार नहीं है, लिया नल इतिका इजहार उत्तहावुनी बिल अमरी, इसलिए क्योंकि टेक लगाना ये अमर की बेपरवाही का इजहार है, फकान ए आराजन, तो ये एराज होगा, वल अव्वलु हुवल असहु, और पहला कौल जो है वो ज्यादा सही है, वो जो जामे सगीर में आया साहिब हिदाया फरमा रहे हैं, कहते हैं वल अव्वलु हुवल असहु, के पहला कौल यानी जो जामे सगीर में आया वो ज्यादा सही है, अगरचे ये कौल भी सही है लेकिन वो कौल ज्यादा सही है, वलव कानत काइदतन फस्तजअत फीह रिवायतान अन अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह, वलव कानत काइदतन, और अगर औरत बैठी हुई थी, फस्तजअत, फिर वो लेट गई, फफीह रिवायतानी, तो इस बारे में दो रिवायतें हैं, अन अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से, एक रिवायत के मुताबिक इसमें इख्तियार खत्म हो जाएगा और दूसरी रिवायत के मुताबिक इसमें इख्तियार खत्म नहीं होगा। भाई तो इसमें दो रिवायतें हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से, एक रिवायत के मुताबिक खियार बातिल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो बैठी हुई थी, लेट गई है, सिर्फ उसकी हालत बदली है, मजलिस तो वही है भाई, तो इसमें कोई एराज की दलील नहीं है, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक बैठी हुई थी और लेट गई है, तो ये एराज पाया गया, लिहाजा इस औरत का ख्याल बातिल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि लेटना ये बेपरवाही की अलामत है, एक चीज को मामूली समझने की अलामत है, लिहाजा इसकी वजह से उसका ख्याल बातिल हो जाएगा। आगे देखिए, वलौ कालत अदउ अबी अस्तशीरुहु औ शुहूदन उशहिदुहुम फहिया अला खियारिहा, खावन ने इख्तियार दिया अमरु की बियदी की, तेरा मामला तेरे हाथ में है, और वो औरत खड़ी हो गई अपने वालिद को बुलाने के लिए कि मैं उनसे मशवरा कर लूं, या गवाहों को बुलाने के लिए कि मैं उनको गवाह बना दूं, तुमने मुझे इख्तियार दे दिया है, मैं अब अपने आप पर तलाक वाकई करने वाली हूं, ताकि तुम बाद में इनकार ना कर सको, तो इस सूरत में यह एराज पर दलील नहीं है, लिहाजा इस सूरत में औरत का इख्तियार बाकी रहेगा। भाई कहते हैं वलाउ कालत, और अगर औरत ने कहा अदउ अबी कि मैं अपने बाप को बुलाती हूं, अस्तशीरहू से मैं मशवरा कर लूं, औ शुहूदन या मैं गवाहों को बुला लूं, उशहिदहुम कि मैं उनको गवाह बना दूं, फहिया अला खियारिहा तो यह औरत अभी भी अपने इख्तियार पर है, लिअन्नल इस्तिशारा लितहर्रि सवाबी, लिअन्नल इस्तिशारा इसलिए क्योंकि मशवरा करना, लितहर्रि सवाबी यह दुरुस्त राय बनाने के लिए होता है। तहर्री आपने पढ़ा है, अगर आप जंगल में जा रहे हैं और आपको किबले का पता नहीं तो आप तहर्री करेंगे, क्या माना गौर और फिक्र करके राय बनाएंगे कि किबला किस तरफ है और फिर उस रुख पर नमाज पढ़ लेंगे। तो तहर्री का क्या माना होता है, गौर और फिक्र करके राय बनाना। तो मशवरे से भी क्या है, मशवरे से दुरुस्त राय बनती है। तो कहते हैं लिअन्नल इस्तिशारा लितहर्रि सवाबी, इसलिए क्योंकि मशवरा जो है वो राय के दुरुस्त करने के लिए होता है। वल इशाद उल तहरुज अनिल इनकारी, और गवाह बनाना जो है वो इनकार से बचने के लिए होता है ताकि दूसरा शख्स बाद में इनकार न कर सके। फला यकून दलील अल एराजी, तो लिहाजा ये एराज की दलील नहीं होगा। वह इनकानत तसीर अला दाबत इन औफी महमिल इन फवकफत फहिया अला खियारिहा व इन सारत बतला खियारुहा। सूरत मसला ये, औरत जो है वो सवारी पर चल रही है और खावन ने इसी दौरान उसको इख्तियार दे दिया अमरु की बियदी की, उस औरत ने सवारी रोक ली, तो क्या इससे खियार बातिल होगा? कहते हैं नहीं, इससे खियार बातिल नहीं होगा। हां अगर खावन ने इख्तियार दिया, औरत सवारी पर बैठी है और सवारी खड़ी हुई है और फिर सवारी चल पड़ी, तो फिर औरत का खियार बातिल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि सवारी का खड़ा होना या सवारी का चलना इसकी निस्बत सवार की तरफ की जाती है। जैद घोड़े पर सवार है, जैद जब घोड़े को रोकेगा तो हम कहेंगे जैद खड़ा हुआ है, और जैद जब घोड़े को लेकर चल पड़ेगा हम कहेंगे जैद जा रहा है। तो देखो सवारी की निस्बत सवार की तरफ की जाती है, लिहाजा सवारी का रोकना यह तो एराज की अलामत नहीं, लेकिन सवारी का चलाना यह तो एराज की अलामत है। तो कहते हैं वह इन कानत तसीर अला दाबतिन, और अगर वह औरत चल रही थी अला दाबतिन किसी सवारी पर, औफी महमिलिन या किसी भी पालकी में। महमिल कहते हैं वह जो ऊंटों पर हौदज बनाया जाता, भाई अरब के अंदर ऊंट के ऊपर लकड़ियां सीधी गाड़ देते और फिर ऊपर पर्दा डाल लेते तो यह एक छोटा सा कमरा नुमा बन जाता हल्का फुल्का, ताकि धूप की सख्ती से अपने आप को महफूज रखें, तो इसको महमिल कहते हैं, यानी हौदज कह लो या पालकी कह लो। तो कहते हैं वह इनकानत तसीर अला दाबतिन, और अगर वह औरत किसी सवारी पर चल रही थी, औफी महमिलिन या वो किसी पालकी के अंदर थी, पालकी में या डोली में थी, फवकफत वो रुक गई, फहिया अला खियारिहा तो औरत अभी भी अपने इख्तियार पर है, वह इन सारत और अगर वो सवारी चल पड़ी, बतला खियारुहा तो औरत का इख्तियार बातिल हो जाएगा। लिअन्न सैरद्दाबती वकूफहा मुजाफुन इलैहा, इसलिए क्योंकि सवारी का चलना और उसका ठहरना ये इसकी निस्बत सवार की तरफ की जाती है। वह सफीना तो बिमन जिलतिल बैती, और सफीना यानी कश्ती जो है वो कमरे के दर्जे में है। कश्ती किसके दर्जे में है? कमरे के दर्जे में है, लिहाजा किश्ती के चलने से खियार बातिल नहीं होगा। ये इसी तरह है जैसे कमरे के अंदर है एक शख्स भाई। तो कहते हैं वह सफीना तो बिमन जिलतिल बैती, और कश्ती जो है वो कमरे के दर्जे में है। लिअन्न सैरहा गैरु मुजाफिन इला राकिबिहा, इसलिए क्योंकि कश्ती का चलना उसकी निस्बत सवार की तरफ नहीं की जाती। कश्ती के चलने की निस्बत सवार की तरफ नहीं की जाती। अला तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु ला यकदिरु अला इकाफिहा, कि यह शख्स जो है कादिर नहीं है इस कश्ती को रोकने पर। कश्ती को तो पानी लेकर जा रहा है या हवा लेकर जा रही है, तो ये आदमी उसके रोकने पर कादिर नहीं है। वरा की बुद्धा बति यकदीरू, जबकि सवारी का जो सवार होता है यकदीरू, वो तो सवारी को रोकने पर कादिर होता है। लिहाजा कश्ती के चलने से खियार बातिल नहीं होगा, लेकिन सवारी के चलने से खियार बातिल हो जाएगा। फसल फिल मशीअत, यह फसल है मशीअत के बारे में। मशीअत का माना चाहना, मसलन खावन बीवी से कहता है अंति तालिकुन इन शिअती, तुझे तलाक है अगर तू चाहती है, अगर तू चाहती। तो ये चाहना जो है इसको मशीअत कहते हैं अरबी में, फसलुन फिल मशीअत, ये फसल है मशीअत के बारे में। वमन قال لامرأته, और जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा तल्लिकी नफ्सकी, कि तू अपने आप को तलाक दे दे, वला नियत लहू, और हाल यह है कि उस शख्स की कोई नियत नहीं है, औ नवा वाहिदतन, या इस शख्स ने एक ही नियत कर ली, फकालत तल्लक्तु नफ्सी, औरत ने जवाब में कहा तल्लक्तु नफ्सी, मैंने अपने आप को तलाक दे दी है, फहिया वाहिदतुन रजईयतुन, तो ये एक रजई तलाक होगी। कौन सी तलाक होगी? एक, चाहे नियत न करे और चाहे एक की नियत करे, दोनों सूरतों में एक रजई तलाक वाकई होगी। और रजई होगी इसलिए क्योंकि खावन ने सरीह लफ्जों के साथ इख्तियार दिया है, तल्लिकी नफ्सकी, तो अपने आप को तलाक दे दे भाई। तो कहते हैं फहिया वाहिदतुन रजईयतुन, तो ये एक रजई तलाक होगी। व इन तल्लकत नफ्सहा सलासन, और अगर औरत ने अपने आप को तीन तलाकें दी, वकद अरादा ज़ौजु ज़ालिका, और हाल यह है कि खावन ने भी इसका इरादा किया था, खावन ने भी तीन की नियत की हुई थी, तो वकअना अलैहा, तो तीनों तलाकें औरत पर वाकई हो जाएंगी। भाई क्या वजह है? तल्लिकी नफ्सकी, ये तो सरीह है, और सरीह से तो आपने हमें बताया था कि बगैर नियत के एक तलाक वाकई होती है, और यहां आप कह रहे हैं कि तीन भी वाकई हो सकती हैं, हालांकि उस खावन ने तल्लिकी फेल कहा है, उसने कोई मसदर जिक्र नहीं किया। तो उसका जवाब देंगे साहिब हिदाया कि तल्लिकी कहना इसी तरह है जैसे खावन बीवी से यूं कह रहा हो, इफ अली फेअल तलाकी, तू तलाक वाला फेअल कर ले। खावन ने कहा तो तल्लिकी, लेकिन ये गोया खावन ने क्या कहा है, इफ अली फेअल तलाकी, तू तलाक वाला फेअल कर ले। तो देखो तलाक मस्तर आ गया, और मस्तर के अंदर कलील का भी इहतमाल है और कसीर का भी इहतमाल है। बात समझ में आ गई? जैसे आप किसी को कहते हैं इजरिब, तो इजरिब का क्या माना है, इफ अल फेअल जरबी, कि तू जरब वाला फेल कर दे। तो कहते हैं वकान अलैहा, तीनों तलाकें औरत पर वाकई हो जाएंगी जब खावन ने भी इसका इरादा किया हो। वहादा, और ये इस वजह से, लिअन्न कौलहु तल्लिकी, इसलिए क्योंकि खावन का कौल तल्लिकी जो है माना हो, उसका माना यह है इफ अली फेअल तलाकी, कि तू तलाक वाला फेल कर ले। वह हुस्मु जिनसिन, और ये तलाक मस्तर, ये तो इसमें जिन्स है। फयक अलल अदना, तो ये अदना पर वाकई होगा, माहतेमाल इल कुल्ली, और कुल का इसमें इहतेमाल होगा। कसा इरी असमा इल अजनासी, जैसे कि बाकी असमाए अजनास में होता है। बात समझ में आ रही है? यहां इश्काल होता है, इश्काल ये कि फसलुन फिल मशीअती, ये फसल है मशीअत के बारे में, यानी ऐसे मसले जिनमें मशीअत जिक्र होगी। लेकिन यहां जो पहला मसला जिक्र किया तल्लिकी नफ्सकी, और औरत जवाब में कहती है तल्लक्तु नफ्सी, यहां तो कहीं मशीअत का जिक्र नहीं है, कहीं मशीअत का जिक्र नहीं। तो जवाब यह कि भाई यहां जिमनन मशीअत है, क्योंकि जब खावन ने कहा तल्लिकी नफ्सकी, अपने आप को तलाक दे दे, तो माना यह है तल्लिकी नफ्सकी इन शीती, तो अपने आप को तलाक दे दे इन शीती, अगर तू चाहती है। बात समझ में आ रही है? तो यहां जिमनन मशीयत मौजूद है भाई। आगे देखिए फलिहादा तामलुफी ही नियत उस सलासी, और इसी वजह से इसमें तीन की नियत भी अमल करेगी, क्योंकि अभी हमने बताया पिछले सतर में क्या था कि खावन ने क्या कहा है, इफ अली फेअल तलाकी वह हुस्मु जिनसिन, और वो इसमें जिन्स है, फयकउ अलल अदना माहतेमाल इल कुल्ली, तो ये अदना पर यानी एक पर तो जरूर वाकई होगा और साथ कुल का इहतमाल होगा। फलिहादा तामलु फीही नियत सलासी, तो इसी वजह से इसके अंदर तीन की नियत अमल करती है, क्योंकि इसमें कुल का इहतमाल है। वयंसरिफु इलल वाहिदति इंदा अदमिहा, और ये पलट जाएगा एक तलाक की तरफ, इंदा अदमिहा, जब तीन की नियत ना हो तो फिर एक ही तलाक होगी। वह तकून उलवाहिदतु रजईयतन, और वो एक तलाक जो है वो रजई होगी। लिअन्नल मुफव्वज़ा इलैहा सरीहुत तलाकी, इसलिए क्योंकि वो तलाक जो औरत के सुपुर्द की गई है सरीहुत तलाकी, वो सरीह तलाक है। वह हुआ रजईयुन, और सरीह तलाक रजई होती है। वलाव नवा सिंतई नीला तसिख हो, और अगर खावंद ने दो की नियत की तो फिर सही नहीं है। लिअन नहू नियतुल आददी, क्योंकि ये तो आदद की नियत है। इल्ला इदा कानतिल मनकूहतु अमतन, मगर इस सूरत में कि जब वो मनकूहा बांधी हो फिर दो की नीयत भी सही है, लिअन्नहु जिन्सुन फी हक़िहा, इसलिए क्योंकि ये दो जो है बांदी के हक में पूरी जिन्स है। अगर बांदी के लिए खावन ने दो की नीयत की है फिर दो तलाकें भी वाकई हो जाएंगी, लेकिन इस एतबार से नहीं कि ये दो अदद है, बल्कि इस एतबार से कि ये बांदी की तलाकों की पूरी जिन्स है। भाई तो कहते हैं लिअन्नहु जिन्सुन फी हक़िहा, इसलिए क्योंकि ये तलाकें जो हैं ये बांदी के हक में पूरी जिन्स हैं। वह इन काल अल्लाह तल्लिकी नफ्स की फकालत अबन तु नफसी तुल्लिकत वलव कालत कद इख्तर तु नफसी लम तु तल्लक। सूरत है मसला ये कि खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी नफ्स की, तो अपने आप को तलाक दे दे। तो ये लफ्ज कौन सा है? सरीह। और सरीह से कौन सी तलाक होती है? रजई। मालूम वो तलाक रजई का इख्तियार दे रहा है बीवी को, और बीवी जवाब में कहती है अबन तु नफसी, मैंने अपने आप को बायना कर दिया, तो तलाक बायन वाकई करना चाहती है। तो इस सूरत में खावन ने जो तलाक औरत के सुपुर्द की है उसका एतबार है, जो औरत ने वाकई की है उसका एतबार नहीं है, तो लिहाजा तलाक रजई ही होगी। बेशक औरत अबन तु नफसी कह दे, तलाक कौन सी होगी? रजई ही होगी, क्योंकि खावन ने रजई का मालिक बनाया है, तलाक बायन का तो उसे मालिक ही नहीं बनाया। तो कहते हैं वह इनकाल अल्लाह तल्लिकी नफ्स की, और अगर खावन ने बीवी से कहा कि तू अपने आप को तलाक दे दे, फकालत अबन तु नफसी, तो वो कहती है मैंने अपने आप को बायना कर दिया, तुल्लिकत, औरत को तलाक हो जाएगी, यानी रजई तलाक होगी। वलव कालत, और अगर औरत जवाब में कहती है कद इख्तर तु नफसी, कि मैंने अपनी जात को इख्तियार कर लिया, खावन ने क्या कहा? तल्लिकी नफ्स की, अपने आप को तलाक दे दे। औरत क्या कहती है? इख्तर तु नफसी, मैंने अपने आप को इख्तियार कर लिया। कहते हैं इस सूरत में तलाक नहीं होगी, इस सूरत में तलाक नहीं होगी। भाई क्यों, इसे तलाक क्यों नहीं होगी? कहते हैं इसलिए क्योंकि ये इख्तियार ये तलाक के अल्फाज में से नहीं है। खावंद अगर बीवी से कहे इख्तर तु की या इख्तर तु नफसी, तो इस सूरत में तलाक नहीं होती, क्योंकि ये तलाक के अल्फाज ही नहीं है। हां वो जो सहाबा के इजमा से खावंद इख्तारी कहता था और उसके जवाब में औरत इख्तर तु नफसी कहती थी, उसमें तलाक साबित होती थी, और वो भी खिलाफुल कियास तरीके से। भाई तवज्जो है, वो जो इख्तर तु नफसी से तलाक वाकई होती थी वो इख्तारी के जवाब में था, और वो भी खिलाफुल कियास था, लिहाजा वो अपने मौरिद पर बंद रहेगा। इख्तारी के जवाब में इख्तर तु नफसी कहेगी तो तलाक वाकई होगी, किसी और लफ्ज के जवाब में इख्तर तु नफसी कहेगी तो तलाक वाकई नहीं होगी, क्योंकि यह मसला तो खुद खिलाफुल कियास है। तो कहते हैं वलव कालत, और अगर औरत ने कहा कद इख्तर तु नफसी तो लम तु तल्लक, तो फिर इसको तलाक नहीं होगी। लिअन्नल इबानत मिन अल्फाज तलाक, इसलिए क्योंकि इबानत ये तो तलाक के अल्फाज में से है। पहली सूरत जब औरत ने क्या कहा? अबन तु नफसी, खामन ने क्या कहा था? तल्लिकी नफ्स की, और औरत ने क्या कहा? अबन तु नफसी, इससे तो तलाक वाकई हो जाएगी, क्योंकि इबानत तलाक के लफ्जों में से है। खावंद अगर बीवी से कहे अबन तु की, अबन तु की, और नीयत क्या कर रहा है? तलाक की, तो तलाक वाकई हो जाएगी। या अंतिबाइन उन कहता है और तलाक की नीयत करता है तो तलाक वाकई हो जाएगी। मालूम हुआ इबानत तलाक के अफाल में से है, इसके जरिए तलाक वाकई हो जाती है, जबकि इख्तियार ये तो तलाक के अफाल में से नहीं है। भाई तो कहते हैं लिअन्न इबानत मिन अल्फाज तलाक, इसलिए क्योंकि इबानत ये तलाक के अल्फाज में से है। अल्लाह तारा के आप देखते नहीं अन्नहु लव काला, कि अगर खावन यूं कहता अबन तु की, ये लफ्ज कहता कि मैंने तुझे बायना कर दिया, यनवी बिही तलाक, इस हाल में कि खावन इसके जरिए तलाक की नीयत करता है, औ कालत, या बीवी कहती है अबन तु नफसी, मैंने अपने आप को बायना कर दिया, फकाल ज़ौजु, तो जवाब में खावन कहता है कद अजस्तु ज़ालिका, कि मैंने इसकी इजाजत दे दी, तो इस सूरत में भी तलाक बाइन हो जाएगी। मालूम हुआ ये इबानत तलाक के अल्फाज में से है। तो कहते हैं औकालत अबन तु नफसी, और अगर औरत ने कहा अबन तु नफसी, फकाल ज़ौजु, तो उसके तो खावन ने कहा कद अजस्तु ज़ालिका, तो बानत, औरत बाइना हो जाएगी, फकानत मुआफिकतन, तो ये औरत मुआफिक हो गई, लितफवीज़ी, खावन की तफवीज के, खावन ने जो तलाक सुपुर्द की थी औरत उसके मुआफिक हो गई। भाई कैसे मुआफिक हो गई? खावन ने तो तलाक रजई का इख्तियार दिया था, और औरत तो कौन सी तलाक वाकई कर रही है? तलाक बाइन। तो कहते हैं भाई फकानत मुआफिकतन लितफवीजी, औरत मुआफिक हो गई उस तफवीज के, फिल असली, असल चीज यानी तलाक में, जैसे तल्लिकी नफ्सा की इसे तलाक का इख्तियार मिलता है, तो औरत ने अबंतु कहा है, अगरचे सिफत अलग है लेकिन है तो तलाक का लफ्ज। तो असल चीज यानी तलाक के अंदर औरत खावंद के मुआफिक है, सिफत में औरत मुआफिक नहीं, क्योंकि सिफत तो खावंद ने रजड़ी का इरादा किया है, और औरत कौन सी सिफत लाना चाहती है? बायना सिफत लाना चाहती है। तवज्जो है? तो असल में मुआफकत है लेकिन सिफत में मुआफकत नहीं, तो असल का एतबार है। जब असल में मुआफकत है तो मालूम खावंद ने जो चीज सुपुर्द की है औरत उसी का जवाब दे रही है। हां, वो वस्फे जायद का एतबार नहीं होगा। तवज्जो है भाई, याद रखो, खावंद ने जो चीज सुपुर्द की है उसी का इख्तियार मिला है औरत को। खावंद ने बीवी से कहा तल्लिकी नफ्सा की, तू अपने आप को तलाक दे दे, औरत जवाब में कहती है तल्लक तु जर्रती, मैंने अपनी सौकन को तलाक दे दी। खावन ने क्या कहा था? तल्लिकी नफ्सा की, तू अपने आप को तलाक दे दे, औरत जवाब में क्या कहती है? तल्लक तु जर्रती, मैंने अपनी सौकन को तलाक दे दी। तो याद रखो इस सूरत में सौकन पर तलाक वाकई नहीं होगी भाई, क्योंकि औरत का जवाब खावन की तफवीज के मुताबिक नहीं है। खावन ने तो इसकी अपनी तलाक इसके सुपुर्द की थी, सौकन की तलाक तो इसके सुपुर्द नहीं की। लिहाजा जब खावन ने कहा तल्लिकी नफ्सा की और औरत ने जवाब में कहा अबंतु नफ्सी, खावन ने भी तलाक सुपुर्द की है, और इबानत का लफ्ज भी किस में से है? तलाक के लफ्जों में से है। तो औरत जो है जो चीज सुपुर्द की गई थी उसी का जवाब दे रही है। अलबत्ता सिर्फ वसह में फर्क है, खावन ने तलाक रजई का इख्तियार दिया था और इसने तलाक बाइन की कोशिश की है, लेकिन वसह से कोई असर नहीं पड़ता भाई। जो खावन ने तलाक सुपुर्द की है वही वाकई होगी भाई। तो कहते हैं फकानत मुआफिकतन लितफवीजी, तो ये औरत मुआफिक हो गई खावन के सुपुर्द करने में, फिल असली यानी असले तलाक के अंदर, इल्ला अन्नहा ज़ादत फीही वसफन, मगर ये कि औरत ने उसमें एक वसफ बढ़ा दिया, वह हुआ ताजीलुल इबानती, और वो इबानत को जल्दी करना है। तलाक रजई में भी इबानत आती है लेकिन इद्दत के बाद आती है, और औरत इस वक्त क्या करना चाहती है? तलाक बाइन को वाकई करना चाहती है। तो यह माना है कि इल्ला अन्नहा ज़ादत फीही वसफन, मगर यह कि औरत ने जवाब में एक वसफ को बढ़ा दिया, वह हुआ ताजीलुल इबानती, और वो इबानत का जल्दी करना है, इबानत को जल्दी वाक़े करना है। फयल गुल वसफु ज़ाइदु, तो लिहाजा वसफ ज़ाइद वो तो लग्व हो जाएगा, वयसबुतुल असलु, और असल यानी तलाक साबित हो जाएगी, तो औरत को तलाक रजई हो जाएगी। कमा इदा कालत तल्लक्तु नफ्सी तत्लीकतन बाइनतन, ये इसी तरह है जैसे औरत यूं कहे, खावन ने कहा तल्लिकी नफ्सा की, अपने आप को तलाक दे दे, औरत जवाब में कहती है तल्लक्तु नफ्सी तत्लीकतन बाइनतन, तो इस सूरत में भी तलाक रजई होगी और बैनूनत के जायद वसफ का एतबार नहीं होगा। तो कहते हैं कमा इदा कालत, ये इसी तरह है जैसे औरत जवाब में कहे तल्लक्तु नफ्सी तत्लीकतन बाइनतन, वयम बगी अय्यका ततली कतुन रजईयतुन, और मुनासिब यह है कि इसे तलाक रजई वाके हो। याद रखो भाई, यहां परेशान होंगे तवज्जो से भाई, वयम बगी अय्यका ततली कतुन रजईयतुन, इसका ताल्लुक वो जो मतन में आया था, मतन में क्या आया था? व इन काल लहा तल्लिकी नफ्स की फकालत अबंतु नफ्सी तुल्लिकत, तो जामे सगीर के यह इबारत है, और यहां पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने सिर्फ तुल्लिकत कहा है औरत को तलाक हो जाएगी, यह नहीं जिक्र फरमाया कि रजई होगी या बाइन होगी। तो लिहाजा जाहिर यही है कौन सी तलाक होगी, रजई होगी, क्योंकि खावन ने तल्लिकी नफ्स की सरीह लफ्जों से इख्तियार दिया है, और सरीह से कौन सी तलाक होती है? तलाक रजई, तो जाहिर यही है। तो मतन में यह मुतलक था, अब साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं, कहते हैं वयम बगी, और मुनासिब यह है अय्या का ततली कतुन रजईयतुन के तलाक रजई वाके हो। जरा फुकहा की एहतियात का अंदाजा लगाइए भाई, यह ऐसा मसला है कि आम तालिब इलम को भी बताया जाए वो भी कहेगा तलाक रजई वाके हुई है, जब उसको जाब्तों रसूलों का पता है, तो आम तालिब इलम एक आम आलिम भी कहेगा यहां तलाक रजई वाके हुई है, और साहिब हिदाया जिनकी ये किताब जिसको देखकर उलमा हैरान होते हैं, ऐसी फसीह बलीग इबारतें और इतनी गहरी बातें कि इंसान हैरान रह जाता है, इतने बड़े फकीह हैं, लेकिन एहतियात का आलम देखो, मतन में आया था तुल्लिकत, साहिब हिदाया कह देते कि इसका मानना तलाके रजई है, नहीं यूं नहीं कहा, कहते मुनासिब यही है कि इससे कौन सी तलाक होनी चाहिए, रजई होनी चाहिए। यानी इतनी एहतियात से जवाब दे रहे हैं, ये कतई बात नहीं कर रहे, कतई बात नहीं कर रहे कि इससे रजई होगी, बल्कि आजजी के अंदाज में बात कर रहे हैं कि मुनासिब यह है इससे कौन सी तलाक होनी चाहिए, रजई होनी चाहिए भाई। तो कहते हैं वयम बगी अय्या का तत्लीकतुन रजईयतुन, और मुनासिब यह है कि इससे तलाक रजई वाके हो, बिखिलाफ इख्तियारी, बखिलाफ इख्तियार के। खामन ने क्या कहा था ऊपर मतन में, तल्लिकी नफ्सा की, तो अपने आप को तलाक दे दे। औरत ने कहा था कद इख्तर तू नफसी, तो ऊपर मतन में आया था लम तो तल्लक, इसको तलाक नहीं होगी क्योंकि इख्तियार तलाक के अल्फाज में से नहीं है भाई। अब वही बयान कर रहे हैं, कहते हैं बेखिलाफ इल इख्तियारी, बखिलाफ इख्तियार के, लिया नहु लैस मिन अल्फाज तलाक, क्योंकि ये तलाक के अल्फाज में से नहीं है। अल्लाह तारा क्या आप देखते नहीं, अन्नहु लव काल लिमरअती ही, कि अगर खावंद अपनी बीवी से कहता इख्तर तो की अव इख्तारी, इससे देखो तलाक वाकई नहीं होती, इख्तर तो की मैंने तुझे इख्तियार कर लिया, ये इख्तारी तू इख्तियार कर ले, तो इन लफ्जों से तलाक वाकई नहीं होती क्योंकि ये तलाक के अल्फाज ही नहीं है। और वो जो सहाबा से भी साबित है वो खिलाफुल कियास तरीके पर साबित है भाई, कि इख्तारी से खावंद इख्तियार दे रहा है और इख्तर तो नफसी से तलाक वाकई हो जाएगी, तो ये खिलाफुल कियास तरीके पर साबित है क्योंकि इख्तर तो वगैरह ये तलाक के अल्फाज में से नहीं है भाई। तो कहते हैं अल्लाह तारा क्या आप देखते नहीं है, अन्नहु लौ काल लिमरअती ही, अगर खावन ने अपनी बीवी से कहा इख्तर तू की औ इख्तारी, के मैंने तुझे इख्तियार कर लिया, औ इख्तारी तू इख्तियार कर ले, यनवी तलाका, हाल यह है कि खावन इनके जरिए तलाक की नीयत करता है, लम यका तो तलाक वाके नहीं होगी, वलव कालत इब्तिदाअन, और अगर औरत ने इब्तिदाअन कहा इख्तर तू नफसी, फकाल अज़ौजु अजज़्तु, औरत ने इब्तिदान कहा इख्तर तो नफसी, मैंने अपने आप को इख्तियार कर लिया, और खावन जवाब में कहता है अजज़्तु, मैंने इजाजत दे दी, फिर भी तलाक नहीं होगी, फिर भी क्योंकि औरत के लफ्ज इख्तर तो नफसी से तभी तलाक वाके होती है जब खावन ने इख्तारी कहा हो, और यह भी किस तरीके पर है, खिलाफुल कियास तरीके पर है भाई। तो कहते हैं वलव कालत इब्तिदाअन, और अगर औरत ने इब्तिदाअन कहा इख्तर तू नफसी, मैंने अपनी जात को इख्तियार कर लिया, फकाल ज़ौजु, तो जवाब में खावन ने कहा अजज़ तू, मैंने इजाजत दे दी, ला यक़ऊ शैउन, तो इस सूरत में कुछ भी वाकई नहीं होगा, इल्ला अन्नहु उरिफ़ तलाकन बिल इजमाई, मगर यह बात है कि इस इख्तर तू नफसी इसको तलाक जाना गया है बिल इजमाई, किसके जरिए, सहाबा के इजमा के जरिए, इजा हसला जवाबन लित तखीर, जब ये जवाब बने तखीर के लिए जी। जब ये तखीर यानी इख्तियार देने का जवाब बने, जब खावन ने कहा था इख्तारी, उस वक्त इख्तर तो नफसी कहे तो फिर तलाक वाकई होती है भाई। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु उरिफ तलाकन, मगर इस इख्तर तु नफसी को तलाक जाना गया है बिल इजमाई, इजमा के जरिए, इदा हसल जवाबन लित तखीर, जब ये तखीर यानी इख्तियार देने के लिए जवाब होकर हासिल हो, वकौलुहु, और खावन का ये जो कौल है तल्लिकी नफ्सा की लैसा भी तखीरिन, ये तो तखीर नहीं है, इसमें तो वो कोई इख्तियार नहीं दे रहा, फयलगु, तो लिहाजा औरत का कौल इख्तर तो नफसी लगव हो जाएगा। वान अबी हनीफा रहिमहुल्ला, और इमाम साहेब से रिवायत है कि अन्नहु ला यक़ऊ शैउन बि क़ौलिहा अबन तु नफ्सी, भाई ऊपर मतन में तो आया था, जाहिर रिवायत में क्या आया, खावन ने कहा तल्लिकी नफ्सा की, औरत ने जवाब में क्या कहा अबन तु नफ्सी, तो बतलाया कि इसे तलाक वाके हो जाएगी, इसलिए क्योंकि इबानत ये तलाक के अल्फाज में से है। लेकिन इमाम साहब से एक रिवायत है कि अबन तु नफ्सी से भी तलाक वाके नहीं होगी, बात समझ में आ गई, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वहन अबी हनीफा रहमहुल्ला, और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला से रिवायत है कि अन्नहु ला यक़ऊ शैउन बि क़ौलिहा, कि कोई चीज वाकई नहीं होगी औरत के इस कौल से, अबन तु नफसी, लिअन्नहा अतत बिगैर माफूज़ा इलैहा, इसलिए क्योंकि औरत वो चीज लाई है जो इसको सुपुर्द नहीं की गई थी, औरत वो चीज लाई है यानी वो चीज जिक्र कर रही है, बिगैर माफूज़ा इलैहा, जो उसके सुपुर्द की गई थी उससे गैर है भाई। इदिल इबानतु तुगायिरु तलाका, इसलिए क्योंकि इबानत जो है वो तलाक से मुगायिर है। इबानत क्या है? तलाक से मुगायिर है। खामन ने तो कहा तल्लिकी नफसा की, उसने तलाक का इख्तियार दिया है, और ये क्या कह रही है? अबंतु नफसी, तो इबानत क्या है? तलाक से मुगायिर है। खामन ने जो सुपुर्द किया है, औरत उसका जवाब नहीं दे रही, एक नई अलग बात कर रही है, और औरत नई अलग बात करे उसका तो कोई एतबार नहीं होता, वो तो खावन की बात का जवाब दे फिर उसका एतबार होता है। यह माना है लिअन्नहा अतत बिगैरि मा फुव्विज़ा इलैहा, इसलिए क्योंकि औरत लाई है वो चीज, यानी औरत ने जिक्र किया है उस चीज को, बिगैरि मा फुव्विज़ा इलैहा, जो गैर है उससे जो उसके सुपुर्द की गई थी। इदिल इबानतु तुगायिरु तलाका, इसलिए क्योंकि इबानत तलाक मुगायिर होती है। व इन काल लहा तल्लिकी नफ्सकी फलैसा लहू अन यरजिआ अन्हु, सूरत मसला यह कि खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी नफ्सकी, तो अपने आप को तलाक दे दे, फिर फौरन कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें यह इख्तियार नहीं देता, तो आप क्या कहेंगे? औरत को इख्तियार है या नहीं? तो जवाब यह कि औरत को इख्तियार है। मैंने अभी आपको बतलाया कि यह तमलीक भी है और मीन वजह तालीक है, और तालीक में रुजू नहीं हो सकता, तालीक को फसख नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं वइन काल लहा तल्लिकी नफ्सकी, और अगर खावन ने बीवी से कहा अपने आप को तलाक दे दे, फलैसा लहू अन यरजिआ अन्हु, तो खावन के लिए यह जायज नहीं कि वह उससे रुजू कर ले। लिअन्न फीही मानल यमीन, इसलिए क्योंकि इसके अंदर यमीन का माना है, इसके अंदर तल्लिकी नफ्सकी के अंदर यमीन वाला माना है। मैंने आपको बतलाया था तालीक को भी यमीन कहते हैं, इसलिए क्योंकि यमीन के जरिए जैसे किसी काम पर उभारा जाता है, किसी काम से रोका जाता है, इसी तरह तालीक के जरिए भी किसी काम पर उभारा जाता है और किसी काम से रोका जाता है। और नीज कसम जैसे लाजिम हो जाती है, उसे रुजू नहीं हो सकता। एक आदमी कहे वल्लाह मैं ये काम नहीं करूंगा, अब कसम से रुजू नहीं कर सकता, अब जब भी वो काम करेगा हानिस हो जाएगा, उसे कसम का कफारा देना पड़ेगा। तो जैसे कसम से रुजू नहीं हो सकता उसको फसख नहीं किया जा सकता, इसी तरह तालीक से भी रुजू नहीं हो सकता उसको फसख नहीं किया जा सकता। तो मालूम हुआ तालीक भी यमीन की तरह है, जैसे यमीन लाजिम होती है इसी तरह तालीक भी लाजिम, तो इसलिए तालीक को यमीन कहते हैं। तो कहते हैं लिअन्न फीही मानल यमीनी, इसलिए क्योंकि खावन ने जो तल्लिकी नफ्सकी कहा है इसमें यमीन वाला माना है, यानी तालीक वाला माना है। लिअन्नहु तालीकु तलाकी भी तत्लीकिहा, इसलिए क्योंकि ये तलाक को मुअल्लक करना है भी तत्लीकिहा, औरत के तलाक देने के साथ। गोया खावन ने उसे यूं कहा है, खावन ने कहा तो क्या तल्लिकी नफ्सकी, लेकिन यहां जरा तालीक बना लें, शर्त और जजा बना लें। खावन ने गोया यूं कहा है इन तल्लकती नफ्सकी फअंती तालिकुन, इन तल्लकती नफ्सकी, अगर तूने अपने आप को तलाक दे दी फअंती तालिकुन, तो तुझे तलाक है। तो देखो शर्त और जजा हमने बना लिया, तो ये तालीक है भाई। लिअन्नहु तालीकु तलाक भी तत्लीकिहा, इसलिए क्योंकि ये तलाक को मुअल्लक करना है भी तत्लीकिहा, औरत के तलाक देने के साथ। वल यमीन तसर्रुफुन लाजिमुन, और यमीन यानी तालीक जो है तसर्रुफुन लाजिमुन, वो एक तसर्रुफ़े लाजिम है, यानी उसमें फिर रुजू या फसख नहीं हो सकता भाई। तो खामन ने जब बीवी से कहा तल्लिकी नफ्सकी, और फिर कहता है मैं रुजू करता हूं, नहीं रुजू नहीं हो सकता भाई। वलौ कामत अन मजलिसिहा बतला, और अगर औरत अपनी उस मजलिस से उठ गई बतला, तो औरत का इख्तियार बातिल हो जाएगा। लिअन्नहु तमलीकुन, क्योंकि यह क्या है? तमलीक है। तो मालूम हुआ तल्लिकी नफ्सकी बाज एतबार से देखें तो तालीक है, और बाज एतबार से यह तमलीक है, तवज्जो है। और तमलीक के अंदर मजलिस बदले तो तमलीक क्या होती है? खत्म। आप बैउ शिरा करते हैं, आप किसी से कहते हैं मैंने यह किताब आपको 100 रुपए में बेच दी, ईजाब किया, तो यह क्या है? तमलीक है। यह तमलीक है, आप मालिक बना रहे हैं उसको भाई, कि वो कबूल कर ले बैउ को, वो मालिक बन जाएगा। और तमलीक कब तक रहती है? मजलिस तक। तो लिहाजा यहां भी औरत मजलिस से उठेगी तो इख्तियार खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह तल्लिकी नफ्सा की तमलीक है, और खावन रुजू नहीं कर सकता क्योंकि यह तालीक है। मालूम हुआ तल्लिकी नफ्सा की, या यूं कहो इख्तारी या अमरु की बियदी की, ये जो भी लफ्ज हैं जिनमें खावन बीवी को तलाक का मालिक बनाता है, इन सब में बाज एतबार से देखें तो तमलीक है, और बाज एतबार से देखें तो तालीक है। तो कहते हैं वलव कामत अन मजलिसी हा बतला, और अगर औरत अपनी उस मजलिस से उठ गई बतला तो उसका इख्तियार बातिल हो जाएगा। लिया नहु तमलीकुन, इसलिए क्योंकि खावन का कौल तल्लिकी नफ्सा की यह तमलीक है। बिखिलाफ इमा इदा काल अल्लाह तल्लिकी जर्रा तक, बखिलाफ इसके अगर खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी जर्रा तक, जर्रतुन सौकन को कहते हैं, तल्लिकी तो तलाक दे दे जर्रा तक अपनी सौकन को, तो अब यह मजलिस के बाद भी उसको तलाक दे सकती है। खावन ने कहा था तल्लिकी नफ्स की, तो अपने आप को कब तक तलाक दे सकती है? सिर्फ मजलिस तक। और खावन ने कहा तल्लिकी जर्रा तक, तो अपनी सौकन को तलाक दे दे, तो कहते हैं यह मजलिस के बाद भी तलाक दे सकती है। भाई क्या वजह है, फर्क क्यों कर रहे हैं आप, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तल्लिकी नफ्स की या तल्लिकी जर्रा तक की, तवज्जो है। तो जवाब यह कि तल्लिकी नफ्स की उसमें तमलीक है, और तल्लिकी जर्रा तक की इसमें तौकील है, खावंद उसको वकील बना रहा है। तवज्जो है जी। तो सवाल भाई हमें तो फर्क कोई समझ में नहीं आ रहा, एक वही लफ्ज है तल्लिकी नफ्स की, आप कहते हैं ये तमलीक है, खावन तलाक का मालिक बना रहा है, और दूसरा खावन कहता है तल्लिकी जर्रा तक की, तू अपनी सौकन को तलाक दे दे। यहां आप इसको तमलीक नहीं कहते, यहां आप इसको तौकील कहते हैं कि खावन वकील बना रहा है। तो जवाब ये आपको साहिबे हिदाया भी बतलाएंगे कि इंसान अपने लिए जब कोई तसरुफ करता है तो वह मालिक होने की वजह से तसरुफ करता है। आप गए अपने लिए आपने गाड़ी खरीदी, क्योंकि आप इस तसरुफ के मालिक थे, आप अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं, तो अपने लिए जो तसरुफ किया जाता है वो मालिक होने की वजह से किया जाता है, और किसी दूसरे के लिए जो तसरुफ किया जाता है वो वकील होने की वजह से किया जाता है। मसलन मैंने आपसे कहा जाइए मेरे लिए गाड़ी खरीद कर ले आइए, तो अब आप जब गाड़ी खरीद कर लाएंगे तो आप ये मेरे लिए तसरुफ कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि मालूम हुआ आप मेरे वकील हैं भाई। तो दूसरे के लिए जो तसरुफ किया जाता है वो बतौरे वकील होने की किया जाता है, और अपने लिए जो तसरुफ किया जाता है वो बतौरे मालिक होने की किया जाता है। लिहाजा जब खावन ने कहा तल्लिकी नफ्सा की, तो अपने आप को तलाक दे दे, तो ये औरत अपने लिए तसरुफ करेगी, तो हम क्या कहेंगे ये मालिक बन गई है इस तसरुफ की। और जब खावन ने कहा तल्लिकी जर्रा तक की, तू अपनी सौकन को तलाक दे दे, तो ये फेल वो किसके लिए कर रही है, खावंद के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं कर रही, खावंद के एक काम में मदद कर रही है, वो तलाक दे रही है। और गैर के लिए जो काम किया जाता है वो बतौरे वकील होने के किया जाता है भाई। तो लिहाजा मालूम हुआ तल्लिकी नफ्स की ये तमलीक है, और तल्लिकी जर्रता की ये तौकील है, और तमलीक मजलिस तक रहती है लेकिन तौकील मजलिस के बाद भी रहती है। मैंने आपसे कहा जाओ मेरे लिए गाड़ी खरीद कर लाओ, आप यहां से उठकर चल पड़े, मजलिस बदल गई, तो आप उठकर चले गए, मजलिस बदल गई, लेकिन फिर भी आप वकील हैं, आप जाकर खरीद कर लाते हैं मेरे लिए गाड़ी, तो वो मुझे लेनी पड़ेगी भाई। तो मालूम हुआ तमलीक मजलिस तक रहती है, तौकील मजलिस तक नहीं रहती। लिहाजा जब खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी जर्रा तक की, तो मजलिस के बाद भी वो तलाक दे सकती है। तो कहते हैं वलव कामत अन मजलिसिहा बतला, और अगर औरत अपनी मजलिस से उठ गई तो उसका वो इख्तियार बातिल हो जाएगा। लिया नहु तमलीक उन, क्योंकि ये तमलीक है। बिखिलाफी मा इदा काल लहा, बखिलाफ इसके कि जब खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी जर्रता की, तू अपनी सौकन को तलाक दे दे। लिया नहु तौकीलू व इनाबतुन, इसलिए क्योंकि ये वकील बनाना है, वह इनाबतुन और नाइब बनाना है। फला यक्तसिरु अलल मजलिसी, लिहाजा ये मजलिस पर बंद नहीं रहेगा। व यक्बलु रुजुअ, और नीज ये रुजुअ को भी कबूल करता है। ये एक और फर्क भाई, खावंद ने कहा तल्लिकी नफ्सा की, इससे खावंद अब रुजुअ नहीं कर सकता, अब मजलिस के इख्तिताम तक औरत को इख्तियार रहेगा, क्योंकि ये तालीक है बाज एतबार से, और तालीक में रुजुअ नहीं हो सकता। लेकिन अगर खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी जर्रता की, तू अपनी सौकन को तलाक दे दे, तो ये तौकील है, और तौकील में रुजू हो सकता है। मैंने एक आदमी से कहा जाओ मेरे लिए गाड़ी खरीद कर ले आओ, और फिर थोड़ी देर बाद कहता हूं नहीं नहीं भाई मेरे लिए आप गाड़ी ना खरीदना, तो देखो तौकील में तो रुजू हो सकता है। कहते हैं वयकबलु रुजुअ, और ये तौकील जो है ये रुजू को भी कबूल कर लेता है। वह इन काला लहा, और अगर खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी नफ्सा की मता शीति, खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी नफ्सा की मता शीति, मताशीति कि तू अपने आप को तलाक दे दे, मताशीति जब तू चाहे। तो याद रखो अब तमाम जिंदगी के लिए इख्तियार औरत के हाथ चला गया, क्योंकि मता वक्त के लिए आता है, जिस वक्त तू चाहे, चाहे आज चाहे, चाहे कल चाहे, चाहे साल बाद चाहे। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं वह इन काल अलहा, और अगर खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी नफ्स की मताशीति के तू अपने आप को तलाक दे दे जब तू चाहे, फलाहा अंतु तल्लिका नफ्सहा फिल मजलिस वबादहू, तो औरत के लिए जायज है कि वो उसी मजलिस में अपने आप को तलाक दे दे, वबादहू और मजलिस के बाद भी तलाक दे सकती है। ले अन्न कलिमता मता आम मतुन फिल औकात कुल्लिहा, इसलिए क्योंकि कलिमा मता यह आम है तमाम औकात में, यानी जिस वक्त भी तू चाहे। फसारा कमा इदा काला, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे खामन ने यूं कहा हो, फी अय्य वक्तिन शिती अंति तालिकुन फी अय्य वक्तिन शिती, कि तुझे तलाक है जिस वक्त तू चाहे। तो जिस वक्त अपने आप को तलाक देगी, तलाक वाके हो जाएगी, तो ये जिंदगी भर अब उसके पास इख्तियार रहेगा भाई। वैदा काल अली रजुलिन तल्लिक इमराती, सूरत मसला यह, एक शख्स ने दूसरे आदमी से कहा कि तुम जाकर मेरी बीवी को मेरी तरफ से तलाक दे दो, तो यह तौकील है, यह उसको वकील बना रहा है, लिहाजा यह मजलिस के बाद भी जाकर आदमी तलाक देगा तो तलाक हो जाएगी। और नीस चूंकि यह तौकील है, इसमें खावंद रुजू भी कर सकता है, बाद में मना भी कर सकता है कि न दो तलाक। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वैदा काल अली रजुलिन तल्लिक इमराती, और जब कामन ने किसी आदमी से कहा मेरी बीवी को तलाक दे दे, फलहू अन युतल्लिकहा फिल मजलिस वबादहू, तो उस आदमी के लिए जायज है कि वो उसको उसी मजलिस में भी तलाक दे सकता है, वबादहू और उस मजलिस के बाद भी, वलहू अन यरजिया, और खावन के लिए जायज है कि वो उसे रुजू कर सकता है, ले अन्नहु तौकीलुन, इसलिए क्योंकि ये तौकील है, व अन्नहु इस्तेआनतुन, और ये मदद तलब करना है। ये वकील हम क्यों बनाते हैं? मदद तलब करते हैं, दूसरे को भेज दिया कि जाओ मेरे लिए गाड़ी खरीद लाओ, तो ये गोया उसे मदद तलब कर रहे हैं। तो कहते हैं ली अन्नहु तौकीलुन व अन्नहु इस्तेआनतुन, इसलिए क्योंकि ये तौकील है और ये मदद तलब करना है, फला यल्ज़म, तो लिहाजा ये लाजिम भी नहीं है, इससे रुजू हो सकता है, वला यक्तसिर अलल मजलिसी, और ये मजलिस पर बंद भी नहीं है, मजलिस के बाद भी रहेगी, बिखिलाफ कौलिही लिमरातिही, बखिलाफ इसके कि खावंद अपनी बीवी से जो कहता है तल्लिकी नफ्स की, لأنه عاملة لنفسها, इसलिए क्योंकि ये औरत अपने लिए अमल कर रही है, ये तसरुफ अपनी जात के बारे में इस्तेमाल कर रही है, فكان تمليكا لا توكيلا, तो ये तमलीक है, तौकील नहीं है। ولو قال لرجل طلقها إن شئت, अगर एक शख्स ने दूसरे से कहा कि मेरी बीवी को तलाक दे दे, إن شئت, अगर तू चाहे, अगर तू चाहे, तो फिर याद रखो हमारे अइमा फरमाते हैं कि फिर सिर्फ उसी मजलिस में ही वो तलाक दे सकता है। भाई क्यों? कहते हैं इसलिए क्योंकि खावंद ने कहा है इन शेता, अगर तू चाहे, तो खावंद ने तलाक देने को उस शख्स की मशीयत से मुअल्लक कर दिया, यानी वो अपनी मशीयत से अमल करेगा, और अपनी मशीयत से तो मालिक अमल किया करता है, लिहाजा गोया खावन ने उसको तलाक का मालिक बनाया है कि तू इस मजलिस में मेरी बीवी को तलाक देना चाहता है तो तलाक दे दे, और तमलीक मजलिस तक रहती है, लिहाजा यह इख्तियार भी मजलिस तक ही रहेगा, यह तौकील नहीं है बल्कि तमलीक है, क्योंकि इन शिता का लफ्ज खावन ने जिक्र कर दिया है। कहते हैं वलौ काल अली रजुलिन, और अगर खावन ने किसी आदमी से कहा तल्लिकहा इन शिता के मेरी बीवी को तू तलाक दे दे, इन शिता अगर तू चाहे, फलहू अन युतल्लिकहा फिल मजलिस खासतन, तो उस आदमी के लिए जायज है कि वो उस औरत को तलाक दे दे, फिल मजलिस खासतन, उसी मजलिस में खास तौर पर, मजलिस के बाद तलाक नहीं दे सकता, वलैस लिज़्ज़ौजी अन यरजिया, और खावन के लिए यह जायज नहीं कि इसे रुजू कर ले, खावन इसे रुजू नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि ये तालीक है, इन शिता, अगर तू चाहे, देखो शर्त ला रहा है, और तालीक रुजू को कबूल नहीं करती। ये माना है वले सली ज़ौजी अन यरजिया, और खावन के लिए जायज नहीं है कि वो रुजू कर ले। वकाल ज़ुफ़रु रहमहुल्ला, और इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्ला फरमाते हैं हाद अवल अव्वलु सबा, उनकी ये और पहला मसला दोनों बराबर हैं। पहला मसला क्या था? तल्लिक इमराती, और दूसरे में क्या कहता है? तल्लिक इमराती इन शिता, तो इसमें मशीयत जिक्र है, हमारे नजदीक दोनों में फर्क है। अगर मशीयत को जिक्र नहीं किया तो यह तौकील है, यह मजलिस के बाद भी रहेगी और इसमें रुजू भी हो सकता है। और अगर इन शेता मुअल्लक कर दिया मशीयत के साथ तो फिर यह तमलीक है, लिहाजा मजलिस तक रहेगी। और नीज तालीक भी है, इन शेता अगर तू चाहे, तो लिहाजा ये इसमें रुजू भी नहीं कर सकता। तो कहते हैं वकाल अजुफर रहमहुल्लाहु हाजा वल अव्वलु सवाउन। इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि खावन का ये वाला कौल और पहला कौल जो है सवाउन बराबर हैं, लिअन्नहु तसरीहु बिल मशीअति का अदम ही, इसलिए क्योंकि मशीअत की तसरीह भी इसी तरह है का अदम ही, जैसे कि अदम तसरीह। मशीयत को जिक्र करना भी इसी तरह है जैसे जिक्र ना करना, मशीयत को जिक्र करो या ना करो दोनों बराबर हैं। इमाम जुफर रहमहुल्लाह की दलील चल रही है, पहला मसला क्या था तल्लिक इमराती, और दूसरे में खावन क्या कहता है तल्लिक इमराती इन शेता, तो हमने दोनों में फर्क किया, लेकिन इमाम जुफर फरमाते हैं दोनों बराबर हैं, क्योंकि मशीयत को जिक्र करना या ना करना बराबर हैं। कहते हैं इसलिए क्योंकि वकील अपनी मशीयत से ही अमल करता है, वकील अपनी मशीयत से अमल करता है। याद रखो जब मैं आपको एक चीज का वकील बनाता हूं कि जाओ मेरे लिए गाड़ी खरीद कर ले आओ, तो ये अब आप पर लाजिम नहीं है कि आप जाएं और मेरे लिए गाड़ी खरीदें, आपकी मर्जी है वकील बने, आपकी मर्जी है वकील ना बने। तो जब आप वकील बन गए जाकर गाड़ी खरीद रहे हैं तो अपनी मशीयत से अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं भाई, तवज्जो है। तो इमाम जुफर क्या फरमाते हैं कि मशीयत को जिक्र करें या ना करें दोनों बराबर हैं, क्योंकि वकील मशीयत से ही अमल करता है, अपनी चाहत और अपनी मर्जी से ही अमल करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मशीयत को जिक्र ना करें फिर भी वकील ने अपनी मर्जी से अमल करना है, अपनी मशीयत से अमल करना है। तो कहते हैं लिअन्न तसरीह बिल मशीअति का आदम ही, इसलिए क्योंकि मशीयत की तसरीह करना ऐसे ही है जैसे आदम तसरीह भाई, लिअन्नहु यतसर्रफु अन मशीअति ही, इसलिए क्योंकि वकील भी अपनी मशीयत से ही तसरुफ करता है। फसार कल वकील बिल बैई, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे वकील बिल बै होता है। एक आदमी को आप वकील बनाते हैं कोई चीज बेचने के लिए, मसलन उसे आप कहते हैं बिअहाजश है, यहां जमीर ले आए बेअहू, ये चीज क्या कर दो बेच दो, चाहे आप यूं कह दें और चाहे आप मशीयत जिक्र कर दें, बेअहू इन शेता, इसको बेच दो इन शेता अगर आप चाहें। तो याद रखो चाहे इन शेता कहे चाहे ना कहे, हुक्म एक ही जैसा होगा, ये तौकील ही है, तमलीक नहीं है भाई। तो इमाम जुफर फरमाते हैं जैसे बै के अंदर किसी को वकील बनाया जाए और उसको चाहे वकील बनाने वाला सिर्फ बेअहू कह दे या बेअहू इनशिता कह दे, दोनों सूरतों में एक ही मसला होता है। तो यहां पर भी खावन जो है तलाक के अंदर एक शख्स को वकील बना रहा है तो खावन सिर्फ तल्लिक इमराती कह दे या तल्लिक इमराती इनशिता कह दे, दोनों का एक ही हुक्म होगा, जैसे बै के अंदर दोनों का एक ही हुक्म था, मशीयत को चाहे जिक्र करें चाहे न जिक्र करें। तो कहते हैं फसारक अल वकील बिल बै, तो ये वकील बिल बै की तरह हो गया। इदा कील लहू, जब वकील बिल बै से कहा जाए बेअहू इनशिता कहा जाए, तो चाहे सिर्फ बेअहू कह दें या बेअहू इनशिता कह दें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं फसारक अल वकील बिल बै, तो ये वकील बिल बै की तरह हो गया। इदा कील लहू, जब उससे कहा जाए बेअहू इनशिता कि इसको तू बेच दे अगर तू चाहे, तो यहां मशीयत को जिक्र कर देने से तमलीक नहीं हो जाएगी बल्कि तौकील ही रहेगी। वलना, हमारी दलील यह है कि अन्नहु तमलीक, उनके खामन ने जो कहा ना तल्लिक हा इन शिता, ये तमलीक है। लिअन्नहु अल्लकहु बिल मशीअति, इसलिए क्योंकि खावंद ने इस तलाक को मुअल्लक कर दिया है उस शख्स की मशीअत के साथ, उस शख्स के चाहने के साथ। वल मालिकु हुवल्लज़ी यतसर्रफु अन मशीअतिही, और वो मालिक होता है जो अपनी मशीअत से तसरुफ करता है। व तलाकु यहतमिलु तालीक बिखिलाफ अल बै लिअन्नहु ला यहतमिलुहु, ये जवाब दे रहे हैं इमाम जुफर रहमहुल्लाह के कियास का। उन्होंने तौकील बिल तलाक को किस पर कियास किया था, तौकील बिल बै पर, और तौकील बिल बै के अंदर इन शिता को जिक्र करें या ना करें दोनों सूरतों में तौकील ही रहती है, तमलीक नहीं बनती। तो लिहाजा तौकील बिल तलाक में भी इन शिता को जिक्र करें या ना करें यह तौकील ही रहेगी। ये कौन फरमाते हैं, इमाम जुफर। तो वह तौकील बिल तलाक को किस पर कियास करते हैं, तौकील बिल बै पर, तो उनका भी जवाब दे रहे हैं कि भाई तलाक व तालीक को कबूल कर लेती है लेकिन बै व तालीक का इहतमाल नहीं रखती। तलाक क्या करती है? तालीक को कबूल कर लेती है। तलाक को मुअल्लक किया जा सकता है लेकिन बै को मुअल्लक नहीं किया जा सकता, लिहाजा दोनों चीजों में फर्क है, लिहाजा आप तौकील बिल तलाक को तौकील बिल बै पर कियास नहीं कर सकते क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी नहीं है। एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कियास किया जाता है, दो मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे पर कियास नहीं किया जाता। तो कहते हैं वह तलाक यहतमिलु तालीक, और तलाक जो है वो तो तालीक का इहतमाल रखती है, आप उसको मुअल्लक कर सकते हैं किसी शर्त के साथ, बिखिलाफ अलबाई बखिलाफ बै के लिए, अन्नहु ला यहतमिलुहु, वो तालीक का इहतमाल नहीं रखती, आप उसको किसी शर्त के साथ मुअल्लक नहीं कर सकते। वलौ काल लहा तल्लिकी नफ्सा की सलासन फतल्लकत वाहिदतन फहिया वाहिदतुन। सूरत मसला ये, खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी नफ्सा की सलासन, तू अपने आप को तीन तलाकें दे दे, तो औरत ने एक तलाक दे दी, तो कहते हैं एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर खावन ने बीवी से कहा अपने आप को एक तलाक दे दे और बीवी ने अपने आप पर तीन तलाकें वाके कर दी, तो इमाम साहब फरमाते हैं एक भी नहीं हुई, एक भी नहीं, और साहिबैन फरमाते हैं एक हो गई। भाई देखो ना, पहली सूरत खावन ने बीवी से कहा कि तू अपने आप को तीन तलाकें दे दे, और बीवी ने कहा तल्लक तू नफसी वाहिदतन, मैंने अपने आप को एक तलाक दे दी, तो एक वाके हो जाएगी, हमारे तीन नौइमा के नजदीक एक वाके हो जाएगी। यूं कहेंगे औरत का जवाब खावंद की तफवीज के मुताबिक है, औरत का जवाब खावंद की तफवीज के मुताबिक है, खावंद ने उसे मालिक बनाया था तीन तलाकों का, तो जब औरत तीन तलाकों की मालिक हो गई तो तीन के अंदर एक भी आ गई या नहीं, तो एक एक तलाक की भी वो मालिक हो गई, तो लिहाजा जब तीनों की मालिक है तो एक को उसने अपने ऊपर वाके कर लिया तो वो वाके हो जाएगी। खावन ने तीन का मालिक बनाया है लेकिन उसने एक को अपने ऊपर वाके कर दिया, तो ये औरत का जवाब तफवीज के मुताबिक है। जबकि अगर खावन ने एक का मालिक बनाया और औरत अपने ऊपर तीन वाके करती है, खावन ने कहा तल्लिकी नफ्सा की वाहिदतन, अपने आप को एक तलाक दे दो, औरत कहती है तल्लक तो नफसी सलासन, मैंने अपने आप को तीन तलाकें दे दी, तो साहिबैन फरमाते हैं इस सूरत में भी एक तलाक वाके हो जाएगी, इस सूरत में भी। क्यों? क्योंकि खावन ने एक तलाक का मालिक बनाया, औरत तीन वाके कर रही है, तो कहेंगे भाई इस तीन के जिमन में एक आ गई या नहीं आ गई, एक आ गई, लिहाजा एक वाके हो जाएगी, तो औरत का जवाब खावन की तफवीज के मुताबिक हुआ। औरत का जवाब खावन की तफवीज के मुताबिक हुआ, खावन ने भी उसे कहा था एक तलाक वाके कर ले, उसने भी एक वाके की, अगरचे अलग वाके नहीं की, तीन के जिमन में एक वाके कर दी। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, इस सूरत में कोई तलाक वाके नहीं होगी, इसलिए क्योंकि खावन ने उसको एक तलाक सुपुर्द की है और औरत तीन तलाकें वाके कर रही है, और तीन तलाकें तो खावन ने इसके सुपुर्द ही नहीं की, तो जब ये तीन जो मजमुआ नहीं इस वाके हो रहा, तो इसके अंदर जो एक है वो भी वाके नहीं हो रही। अगर मजमुआ वाके होता तो इसके अंदर एक जो तलाक थी वो भी हम कह देते वाके हो गई है, लेकिन जब मजमुआ नहीं हो रहा तो इस मजमुए के अंदर जो एक तलाक है वो भी वाके नहीं हो रही। यूं कहेंगे कि खावंद ने और बात की थी, बीवी ने और ही बात कर दी। ये इसी तरह है, खावंद ने कहा था अपने आप को तलाक दे दे, बीवी कहती है मैंने अपनी सौकन को तलाक दे दी। भाई खावंद ने कब सौकन की तलाक आपके सुपुर्द की है? ये तो आपने बिल्कुल एक अलग नई बात कर दी, या आप खावंद का जवाब नहीं दे रही, एक नई बात कर रही हैं। तो औरत की तलाक कब वाके होती है? जब उसका जवाब खावंद की तफवीज के मुताबिक हो। अगर उसके मुताबिक नहीं, फिर इसको हम जवाब नहीं कहेंगे, ये एक नई बात शुमार की जाएगी। तो कहते हैं देखिए भाई, कहते हैं वलौ काल लहा तल्लिकी नफ्सा की सलासन, और अगर खावंद ने बीवी से कहा अपने आप को तीन तलाकें दे दे, फतल्लकत वाहिदतन, तो औरत ने एक तलाक दे दी, फहिया वाहिदतुन, तो ये एक ही तलाक होगी।
لِأَنَّهَا مَلَكَتْ اِيقَاعَ الصَّلَاسِ, اس لیے کیونکہ عورت تین طلاقوں کے واقع کرنے کی مالک بن گئی. جب تین کے واقع کرنے کی مالک بن گئی ہے تو ایک کے واقع کرنے کی بھی مالک بن گئی, تو ایک واقع ہو جائے گی. تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا مَلَكَتْ اِيقَاعَ الصَّلَاسِ, اس لیے کیونکہ عورت تین طلاقوں کے واقع کرنے کی مالک بن گئی, فَتَمْلِكُ اِيقَاعَ الْوَاحِدِ ضَرُورَتًا, تو وہ ایک طلاق کے واقع کرنے کی بھی مالک بن گئی ضرورتن یقینی طور پر. وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً, اور اگر خاوند نے بیوی سے کہا کہ اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے, فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا, تو عورت نے اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دیں, لم یقع شیئن عند ابی حنیفہ رحم اللہ, تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک. وَقَالَ يَقَعُ وَاحِدَةٌ, صاحبین فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ایک طلاق ہو جائے گی, لِأَنَّهَا أَتَتْ بِمَا مَلَكَتْ وَزِيَادَةٍ, لِأَنَّهَا أَتَتْ بِمَا ملکت ہو, اس لیے کیونکہ عورت لائی ہے اس چیز کو جس کا خاوند نے اس کو مالک بنایا تھا, یعنی عورت نے وہ چیز بھی ذکر کی ہے جس کا خاوند نے اس کو مالک بنایا تھا. وزیادتین, اور زائد کو بھی لائی ہے, تو زائد کا تو اعتبار نہیں ہوگا, ایک کا اعتبار ہوگا تو وہ واقع ہو جائے گی. تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا أَتَتْ بِمَا مَلَكَتْ وَزِيَادَةٍ, اس لیے کیونکہ عورت لے کر آئی ہے اس چیز کو جس چیز کا اس کو خاوند نے مالک بنایا تھا, وَزِيَادَةٍ, اور زائد کو بھی لائی ہے. فَصَارَ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ أَلْفًا, یہ اسی طرح ہو گیا جیسے خاوند نے بیوی کو ہزار طلاقیں دیں. خاوند اگر بیوی کو ہزار طلاقیں دیتا ہے کہ تمہیں ہزار طلاقیں ہیں, تو کتنی واقع ہوں گی؟ تین واقع ہوں گی, کیونکہ خاوند تین کا مالک ہے, زیادہ کا تو مالک ہی نہیں ہے. اور اسی طرح جب خاوند نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے, تو عورت کتنی طلاقوں کی مالک بن گئی؟ ایک کی مالک بن گئی. تو جب اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دیں, تو وہ ایک واقع ہوگی اور وہ دو لغو چلی جائیں گی. جیسے خاوند جب ہزار کہتا تھا تو تین واقع ہو جاتی تھیں اور باقی لغو چلی جاتی تھیں, جتنے کا مالک ہوتا تھا اتنی واقع ہو جاتی تھیں, تو عورت بھی جتنے کی مالک ہے اتنی واقع ہو جائیں گی, یعنی ایک طلاق. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں فَصَارَ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ أَلْفًا, تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ خاوند نے اس کو ہزار طلاقیں دیں, تو ان ہزار میں سے تین واقع ہوئی کیونکہ خاوند تین کا مالک تھا, اور عورت نے بھی اپنے اوپر تین طلاقیں واقع کی, تو صرف ایک واقع ہوئی, دو لفظ چلی گئیں کیونکہ وہ ایک کی مالک تھی. بھائی آگے دیکھیے, ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر خاوند نے ایک کا مالک بنایا ہے اور عورت نے کہا میں نے اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دیں, تو ایک بھی واقع نہیں ہوئی. اب امام صاحب کی دلیل ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہا اتت بغیر ما فوز الیہا, کہ عورت لائی ہے اس چیز کو بغیر ما فوز الیہا, کہ جو اس کے سپرد کی گئی تھی اس سے غیر ہے, جو چیز اس کے سپرد کی گئی تھی اس کے علاوہ کو عورت نے ذکر کر دیا ہے, یعنی خاوند نے ایک کا کہا اور یہ تین لے آئی, تو یہ اس سے غیر ہے. فکانت مبتدئۃً, تو یہ عورت مبتدئہ ہوئی, یعنی ایک نئی بات کرنے والی ہو گئی. کہنا یہ چاہتے ہیں عورت کا یہ قول خاوند کی تفویض کا جواب نہیں قرار دیا جا سکتا, یہ ایک الگ بات ہے بھائی. یہ مانا ہے فکانت مبتدئۃً, تو یہ عورت جو ہے مبتدئہ ہوئی, یعنی ایک نئی بات کر رہی ہے, خاوند نے جو چیز سپرد کی ہے اس کا وہ جواب نہیں دے رہی. وہذا لأن زوج ملکہ الواحدۃ, اور یہ اس لیے کیونکہ خاوند نے اس کو ایک طلاق کا مالک بنایا ہے. والثلاث غیر الواحدۃ, اور تین تو ایک سے غیر ہیں. لأن الثلاث اسم لعدد مرکب مجتمع والواحد فرد لا ترکیب فیہ, کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ثلاثہ جو ہے یہ عدد ہے, آپ نے پڑھا تھا کہ ایک عدد نہیں ہے, باقی دو تین چار یہ سب کیا ہیں؟ عدد. تو امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے, وہ فرماتے ہیں خاوند نے اس کو ایک طلاق کا مالک بنایا تھا اور ایک جو ہے وہ مفرد ہے, اس میں کوئی ترکیب نہیں, اس میں کوئی افراد نہیں, ایک ہی فرد ہے, وہاں ترکیب نہیں ہے, جبکہ عورت نے تین واقع کی ہیں اور تین جو ہے وہ ایک کے بالکل مخالف ہے, کیونکہ تین عدد ہے, وہاں ترکیب ہوتی ہے, وہاں افراد ہوتے ہیں. رکب یرکب, ترکیب کا معنی جوڑنا, دیکھو دو تین چار ان سب میں افراد بڑھتے جا رہے ہیں, دو کے اندر دو افراد ہیں, تین میں تین افراد ہیں, چار میں چار افراد, تو ایک کے اندر ترکیب نہیں ہے, جبکہ دو اور تین وغیرہ کے اندر ترکیب ہے, افراد ہیں, لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوئے. खावन ने उसको एक का मालिक बनाया है और तीन तो एक से गैर है। लिअन्ना सलासा इस्मुन लिअददिन मुरक्कबिन मुज्तमईन, इसलिए क्योंकि सलासा ये इस्म है अदद का, ऐसा अदद मुरक्कबिन जो मुरक्कब है, जिसमें तरकीब है यानी अफराद हैं, मुज्तमईन और इकट्ठे हैं, तीन अफराद जमा हैं इसके अंदर। वल वाहिदु फर्दुन, और वाहिद जो है वो तो मुफरद है, ला तरकीब फीही, उसके अंदर कोई तरकीब नहीं है। फकानत बैनहुमा मुगायरतुन, तो एक और तीन के दरमियान मुगायरत है, अला सबीलिल मुजाद्दती, तजाद के तरीके पर, यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद हैं, बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं। एक मुफरद है उसमें कोई तरकीब नहीं, अफराद नहीं है उसमें, और तीन उसमें तरकीब है यानी अफराद हैं और इकट्ठे हैं सारे, तो ये दोनों एक दूसरे के जिद हैं, मुखालिफ हैं। ये इसी तरह है जैसे सर्दी और गर्मी, सर्दी और गर्मी एक दूसरे की जिद हैं, एक वक्त में एक चीज हो सकती है, या सर्दी होगी या गर्मी होगी। दिन और रात एक दूसरे की जिद हैं, एक वक्त में एक चीज हो सकती है, या दिन होगा या रात होगी। भाई बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी एक और तीन जो है वो एक दूसरे की जिद है, जो एक है वो तीन नहीं, जो तीन है वो एक नहीं है। लिहाजा खावन ने तो इख्तियार दिया एक का, और बीवी ने वाकई कितनी की? तीन। तो वो चीज तो वाकई नहीं की जो खावन ने इसको दी थी, लिहाजा ये नई बात एक कर रही है और खावन का जवाब ही नहीं दे रही, लिहाजा इसे तलाक वाकई नहीं होगी। इसी तरह खावन उसे कहे अपने आप को तलाक दे दे, और वो कहे मेरी सौकन को तलाक है, तो भाई खावन ने तो सौकन की तलाक की बात नहीं की, तो ये बीवी ने एक नई बात कर दी है, खावन का जवाब नहीं दे रही। तो कहते हैं फकानत बैनहुमा मुगायरतुन अला सबीलिल मुजाद्दती, तो ये एक और तीन जो है इनके दरमियान मुगायरत है, अला सबीलिल मुजाद्दती, मुखालफत के तरीके पर, बिखिलाफ ज़ौजी। साहिबैन ने इसको कियास किया था खावंद पर, जैसे खावंद तीन तलाकों का मालिक होता है और वो हजार दे दे तो तीन वाके हो जाती हैं, बाकी लग चली जाती हैं, तो इसी तरह खावन ने जब बीवी को एक तलाक का मालिक बनाया है, तो बीवी ने जब तीन वाके कर दी हैं, तो एक वाके हो जाएगी, दो लग चली जाएंगी। तो अब उसका भी जवाब दे रहे हैं कि भाई खावन तो इन तीन तलाकों का मालिक होता है। भाई देखिए, भाई कहते हैं बिखिलाफ ज़ौजी, बखिलाफ खावन के, लिअन्नहु यतसर्रफु बिहुक्मिल मिल्की, इसलिए क्योंकि वह तसर्रुफ करता है मिल्कियत के हुक्म से, क्योंकि वह उन तलाकों का मालिक होता है, यानी मिल्कियत के मुक्तजा के मुताबिक अमल कर रहा है। बीवी को एक हजार तलाकें दे रहा है तो बाकी लव हो जाएंगी और तीन वाके हो जाएंगी, इसलिए क्योंकि खावन तसर्रुफ कर रहा है, किस वजह से? अपनी मिल्कियत के मुक्तजा की वजह से, अपनी मिल्कियत के हुक्म से। जबकि यहां पर औरत जो तसर्रुफ कर रही है वो खावंद के तफवीज के जवाब में तसर्रुफ कर रही है। खावन ने तो कहा एक तलाक अपने आप को दे दे, और औरत क्या कर रही है? अपने आप को तीन तलाकें दे रही है। तो लिहाजा यहां पर जो औरत तसर्रुफ कर रही है वो खावंद की तफवीज के जवाब में कर रही है, लिहाजा औरत का जवाब खावंद की तफवीज के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन यहां तो औरत का जवाब खावंद की तफवीज के मुताबिक नहीं। खावंद ने सुपुर्द की है एक तलाक, और ये कितना जिक्र कर रही है? तीन, और एक और तीन दोनों तो एक दूसरे की जिद हैं भाई, एक दूसरे के मुखालिफ हैं भाई, तो औरत का जवाब खावंद की तफवीज के मुताबिक ना हुआ तो लिहाजा तलाक वाकई नहीं होगी भाई। ये इसी तरह है, आप जैसे एक शख्स से कहते हैं ये किताब मैंने आपको 100 रुपए में बेच दी, और वो जवाब में कहता है मैंने आपका कलम 500 में खरीद लिया। भाई आपने तो कलम की बात ही नहीं की, आपने तो किसकी बात की थी? किताब की बात की थी, तो उसका कबूल करना भी आपके ईजाब के मुताबिक होना चाहिए, फिर ही बेअ मुनाकिद होती है भाई। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी औरत का जवाब खावन की तफवीज के मुताबिक होना चाहिए था भाई। लिअन्नहु यतसर्रफु बिहुक्मिल मिल्की, इसलिए क्योंकि खावन तसर्रुफ करता है मिल्कियत के हुक्म से। वकदा हिया फिल मसअलतिल उला, और इसी तरह है औरत भी पहले मसले में। पहला मसला कौन सा? खावन ने तीन का मालिक बनाया, औरत ने एक वाके की, तो जैसे वहां पर औरत तीनों की मालिक थी तो तीनों में से एक को वाके करना चाहती है तो वो एक को वाके कर सकती है, तो इसलिए हमने वहां कहा था कि एक ही तलाक वाके हो गई, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो कहते हैं वकदा ही फिल मसअलतिल उला, और इसी तरह थी ये औरत पहले मसले में कि वहां वो तीन की मालिक थी और एक उसने वाक़े कर दी थी, लिअन्नहा मलकतिस सलासा, इसलिए क्योंकि वहां वो तीन तलाकों की मालिक थी, अम्मा हाहुना लम तमलिकिस सलासा, या जबकि यहां पर ये तीन की मालिक नहीं है। ये वाक़े कितनी कर रही है, तल्लक तो नफसी सलासन, यहां तो ये तीन की मालिक ही, जिसको वाक़े कर रही है ये उसकी मालिक ही नहीं है भाई। तो कहते हैं अम्मा हुना लम तम लिखी सलासा, यहां पर वो तीन की मालिक नहीं है, वमा अतत बिमाफू वीजा इलैहा, और वो नहीं लाई बिमाफू वीजा इलैहा जो उसके सुपुर्द किया गया था, उसके सुपुर्द तो एक तलाक की गई थी, वो तो इसने जवाब में जिक्र नहीं की बल्कि तीन जिक्र कर दी और तीन तो इसके सुपुर्द नहीं थी, फलगा, तो इस औरत का कलाम लगव हो जाएगा, उसका कोई एतबार नहीं, कोई तलाक वाकई नहीं होगी। ये माना है वमा अतत बिमाफू वीजा इलैहा, और औरत नहीं लाई उसको जो उसके सुपुर्द की गई थी, फलगा, तो औरत का कलाम लगव हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।